السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری مبارک کلمات کی جو ابتدا شروع ہوتی ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہاں تک ہے کہ کسی کا استقبال ہو تو بسم اللہ کہا جاتا ہے، سات بسم اللہ، یعنی سیون، سات بسم اللہ، کیونکہ سات کی عادت کے ساتھ کائنات کی گردش ہے. اور کسی کو اچھا کہا جائے تو کہا کہ یہ اس وقت کا ہے جب بسم اللہ دے ویلے دا ہے، بسم اللہ کے وقت کا ہے. اور اگر کسی کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے تو کہا کہ اس کے ساتھ سات بسم اللہ لگی ہوئی ہیں. برکت کا ذریعہ بسم اللہ، راحت کا ذریعہ بسم اللہ، کائنات کے رازوں کا ذریعہ بسم اللہ. ہمارے وطن کے مایا ناز عظیم انسان ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے ایک بندہ ملا جس کی عمر 100 سال کے قریب، آج تک کبھی بیمار نہیں ہوا، آج تک کبھی دوا نہیں کھائی، آج تک کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے راز پوچھا، تیری تندرستی، تیری صحت کا راز کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دانے یعنی ہر غذا پہ اور ہر قطرے پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، اور ہر دانے اور ہر قطرے کی برکت سے میں بیمار نہیں ہوتا اور مجھے دوا کی ضرورت نہیں پڑتی. یقین کے ساتھ اگر کوئی فرد پڑھ لے، یقین کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی فرض پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور بہت زیادہ تاثیر بھی ہے اور بہت زیادہ اس کی برکات اور کمالات ہیں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ اس کے برکات ہیں اور حد سے زیادہ اس کے کمالات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے تعویذ ایسے ہیں، نقش ایسے ہیں جن کی تاثیر ازلی ہے، بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مر گیا تو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں چل رہا، تو پوچھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو وہ شخص جنت میں ہے، تو پوچھا کہ آپ کو کون سا عمل ہے؟ فرمایا، جب میں اس دنیا سے مرا تھا تو میرا بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اور جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوا اور چھوٹا سا بڑا ہوا، پھر اس کو ایک مکتب میں لے گئے، وہاں استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس کہا کہ اس کے پڑھتے ہی اس کریم کی رحمت جوش میں آئی اور میرے اللہ نے کہا کہ یہ میرا نام لے اور اس بسم اللہ کی برکت سے اس کی بخشش نہ ہو، تو میرے اللہ نے اپنی رحمت سے میرے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے بخشش کر دی اور مجھے معاف کر دی. بسم اللہ تو کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مشکلات کا حل ہے، ناکامیوں کو دور کرتا ہے، کیونکہ بسم اللہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ، اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے نا، اپنے نام کے ساتھ رحمان جوڑا ہے. اگر بسم اللہ الرحمین، رحیم الرحمن ہوتا تو پھر بہت زیادہ और माना निकल आता। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमान होता, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक जल्ला शान उन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमान कहा है। या रहमान दुनिया या रहीम आखिरा, ए दुनिया के रहमान, तेरी नेमत तेरी रहमत और बरकत से अपनों को भी खिलाया जाता है, परायों को भी खिलाया जाता है, अपनों को भी मिलता है और परायों को भी मिलता है इस नेमत की बरकत से, बिस्मिल्लाह की नेमत की बरकत से अपनों को भी मिलता है और परायों को भी मिलता है बिस्मिल्लाह की नेमत की बरकत से। और फरमाया जो रहीम है वो क़यामत के दिन के लिए, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन काफिर अपने पराए इलाहदा हो जाए। वो रहीम सिफत रहीम, और जो सिफत रहमान है वो अपनों को भी खिलाती है और वो गैरों को भी खिलाती है। सिफत रहमान, सिफत रहमान। इसलिए जो शख्स नमाज असर के बाद, जो शख्स नमाज असर के बाद, जो शख्स नमाज असर के बाद 11 बार या रहमान पढ़ता है, 11 बार या रहमान पढ़ता है, क्या फायदा है? बोले आपको क्या फायदा हुआ? आपको किसी को फायदा हुआ 11 बार रहमान? आप कहते हैं रिस्क में बरकत, और क्या फायदा हुआ? बेटा पैदा हुआ, सच है ये। 11 बार या रहमान जो शख्स असर की नमाज के बाद पढ़ेगा, जादू का इलाज है, जादू का। और जिनको बेटा औलाद नरीना चाहिए, उसका औलाद जवाब है, उसका इलाज है, बड़ी लाजवाब चीज है, अल्लाह के नाम की बड़ी ताकत है। और बंदिशों का इलाज है, और नाकामियों का इलाज है। या रहमान दुनिया, या रहमान दुनिया, या रहीम आखिर, अजब नुस्खा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ हमारी जिंदगी की राज वापस्ता है। आज 625 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अमल का अमल होगा, 625 बार हर साल होता है। आखिर इसकी तादाद 625 क्यों है? इसकी तादाद 625 क्यों है? इसके मौकलात और इसके जो गुलाम है वो 625 है। वो कैसे? शेख ने फजले अमाल में लिखा है कि एक कुली था जो लोगों को सामान इधर उधर ले जाने में उसका शोभा था। तो एक बार एक शख्स, उसको कि सफर करना था, माजूर था, रास्ते में मिला, कहा कि मुझे अपने खच्चर पे बिठा ले तो मैं भी सफर करना चाहता हूं। तो उस कुली ने उसको भी सफर खच्चर पे बिठा लिया, माजूर आदमी को। एक जगह पहुंचा तो एक वीराने की तरफ उसको कहा कि इधर से रास्ता आसान है, तो उसको उधर ले गया। आगे देखा तो लोग मरे हुए थे, हड्डियां खोपड़ियां पड़ी थी। तो माजूर आदमी खच्चर से उतरा तो कोई माजूर नहीं था, कोई माजूर नहीं था। उसने खंजर निकाला और उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। तो उसने कहा तेरा मकसद माल है तो माल ले ले, मुझे कत्ल न कर। कहने लगा नहीं, मेरा एक उसूल है, पहले मैं बंदे को कत्ल करता हूं और उसके बाद फिर मैं उसका माल लेता हूं। तो ये बंदा कहने लगा, जो कुली था ये कहने लगा, अच्छा ऐसा कर, मुझे कत्ल न कर, मुझे कत्ल न कर, इससे पहले कि मैं नफिल ना पढ़, मुझे दो नफिल पढ़ने दे। उसने कहा पढ़ ले। अब इसने नफिल शुरू किए तो उसने कहा जल्दी कर, वो तकाजा कर रहा है, खौफ से इसको कोई जुबान पे कुछ नहीं आ रहा। तो इसने नफिल पढ़ने के बाद इसके मुंह पे एक आयत आई, अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ादा। बस ये आयत आते ही बेसाख्ता ऊपर से एक फरिश्ता आया, घोड़ सवार था, उसके पास वर्ष था, उसने आके उसे घुस मारा, उस जालिम को, वो गिरा और उससे शोले आग के गिरे। तो ये जाने लगा, उसे उसको थाम लिया कि मेरे मोहसिन आप कौन हैं, आप कौन हैं मेरे मोहसिन, और आप किस लिए आए? पर मैं इस आयत का गुलाम, इस आयत का खादिम हूं जो आयत तूने पढ़ी है। हर आयत का एक खादिम होता है जिसको हम अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरिश्ता भी कहते हैं और जिसको हम मौकल भी कहते हैं। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के गौर से सुनिएगा, आज 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है, हमारी आज तीसरी नशिस्त है, और वो पैकेज जो अबकरी मैगजीन में छपे, हर नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह हम वो बेहतरीन पैकेज कर रहे हैं और उससे अल्लाह की रहमत से बहुत नफा हो रहा है और बहुत खैर मिल रही है। आपके अंदर असल में अदब और कदरदानी है। बस एक दरखास्त करूंगा, कहीं मुसलसल मुसलसल सुबह शाम की महफिलें हमारे अंदर के अदब को खत्म न कर दें, हमारे अंदर के तलब को खत्म न कर दें, हमारे अंदर के सच्चे जज्बे को खत्म न कर दे। आप सच्चे जज्बे वाले हैं, आप सच्ची तलब वाले हैं, आप सच्ची तलब वाले हैं, आपके अंदर सच्चा जज्बा, सच्ची तलब और सच्ची तड़प है, कहीं ये जज्बे हमारे कमजोर ना हो जाए, कहीं ये जज्बे हमारी मान ना पड़ जाए। और पहले से जुड़ के बैठना, पहले से आके बैठना और पहले से अपने आप को मोहताज बना के बैठना, पहले से जुड़ के बैठना, पहले से आके बैठना और पहले से अपने आप को मोहताज बना के बैठना, ये जज्बे जितने भी सच्चे होंगे और जितने जज्बों में हम तरक्की करते जाएंगे, उतना कामयाबियां, खैरें, रहमतें, बरकतें पाते जाएंगे, जितने भी हमारे जज्बे होंगे सच्चे। और अल्लाह का फजल है, माशाल्लाह आपके जज्बे सच्चे हैं, आपकी तलब सच्ची है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप घरों को लौटेंगे झोलियां भर के, मुरादें पाके, बरकतें पाके, आशें उम्मीदें हासिल करके, और अल्लाह के खजानों से बीमारियां, परेशानियां, दुख दर्द और जादू जिन्नात असरात बंदिशों का छुटकारा इंशाल्लाह पाके जाएंगे। जिंदगी की बंदिशें हैं, जिंदगी की रुकावटें हैं और मुसलसल नाकामियां हैं, इन सब का इजाला, इन सब का हल उस करीम के खजाने से इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। 625 इसके मुअक्कल हैं, 625 इसके साथ अल्लाह ने खुदाम जोड़े हुए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और वह सारे नूरी हैं, अलवी हैं, नूरी हैं, सिफली नहीं, काले नहीं, नूरी हैं। और वो नूरी वो है जिनमें हर फरिश्ते की ताकत अल्लाह पाक ने इतनी रखी है, फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो कंधा है, एक गर्दन से लेकर कंधे तक मशरिक और फिर दूसरे कंधे गर्दन से लेकर मगरिब तक मगरिब, सारा सारी कायनात थक जाए, और फरमाया अगर जिब्रील अपने परों को खोल दे तो उसके परों से सारी दुनिया में छांव आ जाए, चांद सूरज की रोशनी तक डूब जाए। तो फरिश्ते में कितनी ताकत अल्लाह ने रखी है। और जब बंदा एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, जरा जज्बे से, दिल की कैफियतों से, अंदर के दर से पढ़े, तो बिस्मिल पढ़े, 3 बार पढ़े और तवज्जह से, بسم الله الرحمن الرحيم इस जज्बे के साथ, इस पूरे जज्बे के साथ, इस दिल की गहराइयों के साथ आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ा या तीन बार, हर बिस्मिल्लाह के पढ़ने पर 625 मौक्कलात और उसके खुद्दाम आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं, हुजूर फरमाए हमारे जिम्मे क्या खिदमत है, फरमाए हम आपकी क्या खिदमत करें। आपने सुना होगा एक अलादीन उसका नाम था, उसको एक चिराग मिला तो चिराग के रगड़ते ही एक जिन निकला और जिन कहने लगा कि मेरे आका मेरे जिम्मे क्या खिदमत है। ये कहानी जैसी भी है सच्ची है, हकीकत है अलादीन के चिराग की, पर यकीन जानिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे 70,000 अलादीन के चिराग खत्म हो जाए पर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ताकत और तासीर है, कमाल और बरकत है, अता और शफकत है, राहत और रहमत है, वो बहुत कम किसी कायनात की चीज में हो सकती है। क्योंकि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो 625 फरिश्ते, 625 फरिश्ते इस बंदे की मदद, इसके साथ तआवुन और इसकी तवज्जो और इसके काम करने के लिए अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बोले क्या काम करें। एक वाकया आज याद आया, मेरे पास एक साहब आए मुझसे कहने लगे मेरे घर में अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, छत पे कोई चलता है, कोई चीज घसीटने की आवाज आती है, सीढ़ियों से कोई उतरता है, सीढ़ियों से कोई चढ़ता है, मैं परेशान हूं। घर में बड़ी बड़ी रेडियो, उस दौर में बड़े बॉक्स वाली रेडियो होती थी, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। फिर कहा मैं उसके सेल निकाल देता हूं लेकिन वो सेलों के बगैर चलती है। मैं मुसलसल परेशान, और मेरे घर में साल हर साल से बीमारियां हैं, दुख हैं और तकलीफें हैं, एक से निकलता हूं दूसरी और दूसरी तकलीफ से निकलता हूं, मेरा घर मुश्किलात में फंसा हुआ है, अटका हुआ है। मैंने उसको कहा कि तू ऐसा कर, हर अमल से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मौक्कलात को ये बात कहे। ये बात बड़ी गौर तलब है, तवज्जो तलब है। शायद मैं जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, याद ही नहीं रहती, छुपाने की कोशिश तो नहीं, बाज चीजें अचानक याद आती हैं आप हजरात के सच्चे जज्बे की वजह से, सच्चे खुलूस की वजह से और सच्ची हमदर्दी की वजह से, आप की बरकत से अल्लाह मुझ पे ये चीजें, दिलों पे, दिलों की ये बातें अल्लाह जुबान पे लाते हैं। मैंने उनसे अर्ज किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और निहायत कसरत से पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, बहुत पढ़, बहुत पढ़ और कसरत से पढ़। पढ़ने के बाद ना इसके मौक्कलात को कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मौक्कलात को, कि मेरे अल्लाह से कहो कि मेरे काम बनवा दो, कुछ चीजों ने मुझे तंग किया हुआ है, मुझे खबर नहीं वो जादू है, मुझे खबर नहीं वो जिन्नात है, मुझे खबर नहीं मेरा शक है, मेरा वहम है, लेकिन हकीकतें तो सामने आ जाती हैं। अगर शक और वहम होता तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे सामने आई, मैं परेशान हूं, आखिर क्या करूं। तो मैंने उससे कहा कि तू ये कहे, इन मौक्कलात से कहे तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत पे मुकर्रर हो। अब ये पैगाम जरा गौर से सुनिएगा, तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत पे मुकर्रर हो, तुम मेरे ये काम कर दो। मुकर्रर किसने किया? अल्लाह ने किया है ना, तो मेरे ये काम कर दो। ये मुसीबत है, ये परेशानी है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये नाकामी है, ये मेरे ऊपर कोई असरात हैं, कोई बंदिशें हैं, किसी ने जादू मुसलत किया, किसी ने जिन्नात मुसलत किए, किसी ने कोई किसी किस्म कोई ऐसी चीज मुसलत की है ना, जो भी हुई है ऐसा करें ये सारी चीजें आप खत्म कर दें, ये सारी चीजें। मैंने कहा आप پڑھتے بھی رہو اور ان موکلات کو کہتے بھی رہو، اور دوسرا ایک خاص ساتھ میں 625 بار نقش جو ماشاءاللہ آپ لکھ کے بھی لائے ہیں، آج بھی اس کی ابتدا بھی ہوگی، اس کو انشاءاللہ ہم دم بھی کریں گے، اس کا بابرکت عمل بھی ہوگا 625 بار کا نقش، اور یہ بھی میں نے ان سے کہا لکھ کے گھر میں لٹکا دو، اور یہ جو 625 بار نقش ہے آپ اگر اس کے حوالے مضبوط چاہتے ہیں، اس کے ثبوت چاہتے ہیں اور اس کے مضبوط حوالے چاہتے ہیں تو ہماری اکابر پر اعتماد اس کو کھولے، اس میں اس کے بہت طاقتور حوالے مستند کتابوں کے ثبوت موجود ہیں، یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ انہوں نے میری بات کو سمجھا اور میری بات کو سمجھنے کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیا، سمجھنے کے بعد کرنا شروع کر دیا، اور جب کرنا شروع کر دیا اب اس سوچیں جنات طاقتور نہیں، انسان سے طاقتور ہے، فرشتوں سے طاقتور تو نہیں ہے، جنات کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں، بس انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، پڑھتے بھی رہے کہتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے کہتے بھی رہے، اور کہا کچھ عرصے کے بعد، مجھے آ کے خود بتایا انہوں نے، کہا کچھ عرصے کے بعد ہم نے محسوس کیا گھر میں کوئی سائے ہیں، گھر میں کوئی چیزیں ہیں، کہنے لگے ہم ڈر گئے کہ شاید کوئی ایسی اور چیز مسلط ہو گئی ہے، ہم تو کسی ایک چیز کو نکالنے میں تھے وہ نکلی نہیں، کوئی اور چیز مسلط ہو گئی ہے، تو کہا ہم پریشان ہو گئے، کہا کوئی سائے تھے گھر میں اور کچھ چیخیں تھی سر میں، اور چیخیں ایسی تھیں جیسے کسی کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے، اور کہا پھر ہمیں خواب آنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں ہیں جن کے چاروں طرف نوکیں اتنی ہیں جیسے تلوار کی نوکیں ہوں، وہ گھر میں آئے ہیں اور وہ ایک ایک بندے کو کوٹ کوٹ کے توڑ توڑ کے نکال رہے ہیں، کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا، کسی کو چارپائی کے نیچے سے نکالا، کسی کو الماری کے اندر سے نکالا، کسی کو الماری کے نیچے سے نکالا، کونے کھدروں میں چیزیں گھسی ہوئی تھیں ادھر سے نکالا، پکڑا توڑا کاٹا، کہا ان کی چیخیں تھیں، اور وہ کہتے تھے نہیں ہم خود جائیں گے، کہا نہیں تم خود نہیں جاؤ گے، ہماری ذمہ داری ہمیں تمہیں خود بھیجیں گے، آنکھوں سے دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے ان سے کہا کہ بس اب تمہیں اللہ نے دکھا دیا ہے، اب تم آگے بڑھو اور اس کو اور پڑھو، اور پڑھنے کے بعد ان موکلات سے کہو دیکھو اللہ نے آپ کی ذمہ داری ہماری خدمت میں، ہماری حفاظت میں، ہمارے اوپر چھتری اور چھاؤں میں لگائی ہے، اللہ نے لگائی ہے نا، تو آپ اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے ہماری حفاظت کریں، یہ مصیبتیں گلے پڑی ہیں، وہ جادو ہیں، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندش ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہمارا تو گھر برباد ہو گیا، ہماری تو ہر چیز تباہ ہو گئی، ہمارا تو کچھ بھی باقی نہ بچا، بس یہ باتیں وہ کرتے تھے اور بسم اللہ پڑھتے تھے، اور گھر میں 625 بار بسم اللہ کا نقش دکھا، اور میں نے کہا کہ وہ آپ لگا دیں، اس کو لیمینیشن کر دیں، جیسے بھی آنکھوں سے دیکھنے شروع کیے نقشے، حتیٰ کہ دو تین واقعات میری زندگی میں، چند واقعات ہیں جس میں جگہ جگہ خون ملا، خون ملا، ایک دعائے کعب کا واقعہ میری زندگی میں آیا تھا، وہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں، ایک اور کچھ واقعات میری زندگی میں ایسے ہیں جس میں خون ملا، جگہ جگہ خون پڑا ہے، جیسے کوئی زخمی ہے، خون پڑا ہوا ہے، ادھر خون پڑا ہے، ادھر خون پڑا، وہ آقا کہ انہیں کہتے تھے آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، اور ان سے کہیں ہمیں نہ نکالیں، ہمیں موقع دے دیں ہم خود نکل جائیں گے، تو مجھے آ کے کہتے تھے، بڑے دکھی ہیں، بڑے درد والی آواز سے، بڑے غم والی آواز سے کہتے ہیں آپ نہ کہیں، میں نے کہا نہ ماننا، نہ سننا، کیوں، قرآن کہتا ہے انہم یقیدون کید واقید کیدا، ان کے مکر بڑے خطرناک، ان کے فریب بہت زیادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم بسم اللہ کی طاقتوں کو بھی واپس کر بیٹھو اور یہ پھر غالب آ جائیں، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ اور ان کے گھر میں جو صفایا ہوا بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا، اور گھر میں جو انوکھے واقعات ہوتے تھے ان کا، وہ صفایا ہوا جو گمان سے بالاتر ہے۔ ہم پھر غلطی خود بھی تو کرتے ہیں۔ آج میں بے چین تھا، بیٹھا بیٹھا چل پڑا، ادھر گیا تو خواتین نے مجھے کہا کہ یہ یہاں وضو کی حوضی میں دو سانپ ہیں، وہ ابھر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، دو سانپ ہیں۔ تو میں نے کہا ایک طرف ہٹ جاؤ۔ پھر میں نے خدمت والوں کو بلایا، میں نے کہا بھئی یہ سانپ ہیں دو، اب میں اگلی خدمت میں جا رہا ہوں، میں اگلی خدمت میں چلا گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے انہوں نے تصویر دکھائی، انہوں نے کہا جی گوہ تھی بیچاری پھنسی ہوئی تھی، وہ بندوں سے ڈرتی تھی، بندے اس سے ڈرتے تھے، گوہ آ گئی کہیں سے۔ اللہ کے حبیب کے دور میں بھی تھی، کملی والے کے دور میں، ایک گوہ تھی، ایک بدو اس کو شکار کر کے لے جا رہا تھا کھانے کے لیے، تو کہنے لگا اگر آپ اس مردہ گوہ کو بلوا دیں تو میں آپ پہ ایمان لاؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب نے اس مردہ گوہ کو کہا، اس نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور میرے کملی والے کی شان بیان کی، اور میرے مدینے والے کی شان بیان کی۔ اچھا وہ جو بندہ میرے پاس آیا نا، وہ میں نے اس کو کہا لاٹھی لے کے آنا، یہ نہیں کہا اکیلا، دو سانپ ہیں، لاٹھی لے کے آ۔ ہم بھی دیوانے ہیں، بغیر لاٹھی کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب لاٹھی لے آیا، وہ لاٹھی پہ چلو کچھ نہ کچھ تو نکلا نا، وہ گو بیچاری اپنی طور پہ ڈر رہی تھی، بندے ڈر رہے تھے۔ ہم بغیر لاٹھیوں کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں ان جنات سے، ان جادو سے، ان شیاطین سے، ان چیزوں سے، لاٹھی ہے نہیں۔ اور میں چاہتا ہوں لاٹھی جو ہے اپنی بھی نہ ہو، اللہ کی لاٹھی ہو، اور یہ اللہ کی لاٹھی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اور یہ اللہ کا ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ کے بغیر نہیں۔ تو جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور ایران کے شہزادے کو لائے، تو حضرت عمر کسی کھجور کے درخت کے نیچے کیلولہ کر رہے تھے، کھجور کے درخت کے نیچے، تو مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس کی جو تمغے تھے نا اور اس کا لباس تھا، اس کی آواز کی وجہ سے ایک دم اٹھے، تو ایران کے شہزادے ولی عہد کو باندھا ہوا تھا اور صحابہ کرام لے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اٹھ کے ایسے پوچھا، حال سنا، حال سنا۔ کہنے لگا عمر اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں لائے ہو اور ہمارا حال پوچھتے ہو۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ عمر اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں لائے ہمارا حال پوچھتے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ عرب آج تک ہم سے نہیں جیت سکے، تم نے کتنی اور تمہارے بابا و اجداد نے کتنی جنگیں لڑی اور سپر پاور سے ہم سے جیت سکے ہو، اب اپنے اللہ کو ہمارے ساتھ لاؤ ہو، ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں، تمہارے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں، تمہارے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درویش کہنے لگے، میں دوران تعلیم رائے پور میں تھا، تو وہاں ایک سنا ہے، एक बहुत बड़ा जादूगर था और उसके पास बड़े बड़े जादू के कमालात थे। और मैं जब वहां था तो उस जादूगर के बड़े कारनामे सुने, लोगों से उसकी बड़ी बातें सुने और लोगों का उसका बहुत ज्यादा नाम सुना। अब उसकी कुछ करामतें, उसके कुछ बातें मैं आपको बता दूं। कहने लगा कि वो मिट्टी की रोटी बनाता था, ऐसे तवे पे डाल देता था। रोटी पकने के बाद ऐसी रोटी होती थी खस्ता, जिसमें छोटी इलायची भी, देसी घी भी, सौंफ भी, मीठी रोटी बनाते हैं ना वो, और बाजरा भी उसमें, पता नहीं वो रोटी बन जाती थी। खाओ, खुद भी खाता था। मेरे सामने मिट्टी गूंदी, मेरे सामने मिट्टी की रोटी बनाई, मिट्टी की मोटी रोटी, और मेरे सामने बनाई, और वो रोटी जो है वो मिट्टी की रोटी मीठी रोटी बन जाती थी। बड़ी अच्छी बात है। और कहा बाजू का ऐसा करता, मिट्टी का ढेला उठाता, हाथ में से मलना शुरू कर देता, मलने के बाद हाथ में उसको दे देता, मेरे हाथ में मिट्टी होती थी। कहने लगा घर में रख लेना, सुबह उठना तो फिर तुझे इसमें बहुत कुछ मिलेगा। मैंने घर में रख लिया, सुबह उठा तो किसी का चांदी बना हुआ होता था वो ढेला, किसी का सोना बना हुआ होता। अजीब गरीब कहा उसके वाकयात थे, और बड़े बड़े मुसद्दका लोग, तस्दीक याफ्ता लोग, ऐसे लोग जो इन चीजों को मानते ही नहीं, वो उस बंदे की तस्दीक करते थे कि भैया तो वाकई ऐसा है, और उसको मानते थे वाकई ऐसा है। हमने आंखों से उसके करिश्मे देखे, कमाल देखे। ताकि उसके पास क्या होता था, लोग आते थे साहिल अपनी जरूरतों को लेकर, लोग आते थे। कुछ खातिन ऐसी थी जिनकी औलाद नहीं थी, उनको एक तरफ कर देता था। कुछ ऐसे थे जो मरीज थे, मर्ज थे, उनके एक तरफ कर देता था। कुछ ऐसे थे जिनके काम फंसे हुए, अटके हुए, मुश्किलें, मुश्किलात, उनको एक तरफ कर देता था। कुछ ऐसे थे जिनका कारोबार, रोजगार नहीं, उनको एक तरफ कर देता था। अब ये ग्रुप बना के उसने बिठा दिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये चार ग्रुप है। तो कहा बैठ के बस चुप करके से पढ़ना शुरू कर देता था। उसके सामने राख पड़ी होती थी, उसके सामने मिट्टी पड़ी होती थी, उसके सामने कुछ पड़ा हुआ होता था, ऐसे बस पढ़ता था, और उठा के ना मिट्टी उनके मुंह पे मार देता था। उधर उठाया, मुंह पे मार दी, और हर बंदे की कोशिश होती थी ये मिट्टी मेरे मुंह में जाए और मैं मिट्टी निगल जाऊं, छोटा सा जर्रा जैसे भी। उधर मुंह पे मार दी, उधर मुंह पे मार दी, उधर मुंह पे मार दी, और चुप करके चला जाता था। थोड़ी देर बाद लोग भी उठ के चले जाते थे, और सारे लोगों की मुरादें पूरी हो जाती थी, सारे लोगों की मुरादें पूरी हो जाती थी, मुरादें पूरी हो जाती थी। यानी इस तरह के वाकयात ऐसे हैं जो मुसलसल लोगों को सामने आते और लोग देखते और लोग कहते क्यों वाकयात है, आंखों से देखे हम, और लोग उसको जादूगर कहते थे। कहा कि एक दफा वो दुर्वेश कहने लगे, मेरी जी में आया उस जादूगर को देख के तो आऊ। कहा कि मैं बैठा था, वो लोगों को ऐसे किसी को क्या दे रहा था, किसी को क्या दे रहा था, फिर मैं उसके चेहरे में देखा, मैंने कहा ये जादूगर तो नहीं है। सी माहौम फी वजूह है, उनके चेहरे बोलते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मेरे वालिद साहब तावीजात और ये वजायफ का काम करते थे, लोग उनको जादूगर कहते थे, हम भी वालिद को जादूगर कहते थे। वो तो आपके वजायफ से पता चला, चीजों से, कि वालिद तो मेरे जादूगर थे नहीं, वो तो को अल्लाह का कलाम लोगों को देते थे। का सारी उम्र वालिद की तौहीन करते रहे, और इसी हालत में वालिद साहब फौत हो गए, पता ही नहीं था। उन्होंने कहा हम तौहीद परस्त हैं, और तौहीद के नाम पे वालिद के हर अमल को शिर्क कहते रहे, तौहीद के नाम पे वालिद के हर अमल को बिदअत कहते रहे, वाकई शिर्क और बिदत से हमने बचना है और ये सच और हकीकत है। लेकिन एक बात और बता दूं, याद रखिएगा, हमसे बड़े हमारे अकाबिर हमसे बड़े शिर्क और बिदत को हमसे ज्यादा जानते थे, वो खूब जानते थे ये शिर्क है, वो खूब जानते थे ये बिदत है, वो खूब जानते थे ये अल्लाह का गैर है, वो हमसे ज्यादा जानते थे, हमसे ज्यादा जानते थे। अब मैंने कहा कि इसके चेहरे पे ऐसी कुछ चीज तो है ही नहीं कि इसके चेहरे पे जादूगर का चेहरा नजर आए। मेरे पास कई, उस दिन भी एक जादूगर आया तो उसने कहा जी मैंने तस्बीह खाने की वजह से सब कुछ छोड़ दिया। कई लोगों ने अल्लाह के फजल से तस्बीह खाने के अमाल की बरकत से तौबा की, काली दुनिया से, काले जादू से, काले रोगों से, काले निजाम से तौबा की। और वैसे भी हमारे पास अल्लाह का कलाम और मदीने वाले का फरमान इतना ज्यादा है, हमें तो किसी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंध में अंदरून एक जगह सफर कर रहा था, एक हिंदू जादूगर मुझे मिला और मुझसे कहने लगा कि आप इन्हें नहीं समझाते, मुसलमानों को मुझे काले पीले जादू के लिए मेरे पास आते हैं और मुझे जब कोई मुश्किल होती है मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंत मिनस सालिमीन। जब मुझे मुश्किल होती है मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ। आप इनको सिखाते नहीं? मैंने कहा यही तो सिखाते सिखाते फिर रहा, इसी के लिए तो सारा दिन मेरा यही शोभा है, यही गम है, यही दर्द है, यही फिक्र है, यही सोच है, यही सांस है, यही तो सारा कुछ करता हूं। तो दुर्वेश कहने लगे, मैंने उसकी आंखें देखी, मैंने कहा भाई ये तो काला जादूगर नहीं है। तो बैठा रहा तो जब मेरी मुलाकात का वक्त हुआ तो मैं अपना तारुफ कराया, मैं फला जगह से आया, उठ खड़ा हूं और मुझे सीने से लगाया और कहा कि जो मेरे सीने में है वो मैंने आपके सीने में मुंतकिल कर दिया। उससे मेरी बात अजीब लगी, मुझे उसकी बात अजीब लगी, बातें होती रही। कहा कि मैंने उससे ये ना पूछा कि तूने मेरे सीने में क्या मुंतकिल किया, मैं तो तुझसे बातें करने आया था, देखने आया था कि कोई दुनिया का बड़ा जादूगर है और उसका जादू का बड़ा जोर है और उसके जादू में बड़ी ताकत है, मैं तो ये देखने आया था, मैं चला गया। पहली रात सोया तो मैंने देखा कि एक इमारत है, बहुत बड़ी खूबसूरत महल है और उसके ऊपर गुंबद बने हुए हैं, बुर्ज बने हुए हैं, गुंबद बने हुए हैं और हर गुंबद पे नंबर लिखा हुआ है, कुल 625 बुर्ज और खूबसूरत सफेद मोती पत्थर जमरुद यकीत अकीक याकूत मरजान कीमती पत्थरों के मोतियों के लालो जवाहर के गुंबद हैं और कुल 625 गुंबद हैं। तो मैंने देखा कि ये बड़े खूबसूरत गुंबद है, ये पता नहीं कौन इसमें रहता होगा। तो आवाज आई, वही रहता है जिसने आपको आज सीने से लगाया, ये उसी का महल है। मैंने कहा वो तो जादूगर है, वो तो काला जादू करता है। कहा किसने आपको कहा है? वो तो बिस्मिल्लाह का आमिल है, वो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का आमिल है, किसने कहा काला जादूगर है? उसका महल देखा, उसके महल के जलवे देखे, कमाल देखा, ताकत देखी, तासीर देखी, हैरत देखी, हैरत का निजाम देखा। कल सुबह मैं उठा तो उसके पास फिर चला गया। जब मैं चला गया तो बैठा और बैठ के जब उसके साथ गुफ्तगू का वक्त हुआ, रश होता था बहुत ज्यादा उसके पास, जब उसके पास गुफ्तगू का वक्त हुआ मेरे पास, तो मैंने उससे बात करना चाहिए तो मुझसे कहने लगा बाबा जी 625 का माल मेरा है, आपका भी बन सकता है जो आपने रात देखा था। लोगों ने मुझे जादूगर कहा, मैंने आज तक वजाहते नहीं दी, सफाइयां नहीं दी। मैं मखलूक की खिदमत करता हूं, हिंदू मेरे पास, सिख मेरे पास, ईसाई मेरे पास, मुसलमान मेरे पास आते हैं। अगर आप कहें जो अमल मैंने किया है आपको करा दूं, करा दे, अच्छी बात है। और मैंने फौरन कहा, मुझे ख्वाब में बिस्मिल्लाह के बारे में कहा था कि आप बिस्मिल्लाह के आमिल हैं, तो कहने लगे हाँ यही तो मैं आपको कराना चाहता हूं। फिर उसने एक वाक्या सुना अपना, उन्होंने कहा मेरा वालिद जो है एक गरीब कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, मच्छर पे मिट्टी लाते थे, बर्तन ले जाते थे। इसी गुर्बत में मेरा दादा भी गुजरा, इसी दुर्दत में सुना है पर दादा भी गुजरा, और इसी गुर्बत और सफेद पोशी में मेरी जिंदगी की पिछली नस्लें गुजरी। तो एक जगह कहा मैंने, वालिद ने कहा कि जंगल से लकड़ियां काट के ला, कुभार की जो आवा होता है उसको जलाने के लिए। मैं जंगल की लकड़ियां काटने गया तो देखा तो वहां एक बाबा जी थे, बुजुर्ग थे, उनके साथ थोड़ी सी रोटी बंधी हुई थी और रोटी उन्होंने दरख्त से लटकाई हुई थी और वो लकड़ियां काट रहे थे और बारीक बारीक लकड़ियां फेंक रहे थे। तो कहा कि मैंने वो भी उठा ली, तो मुझसे कहने लगा बेटा कौन हो तुम? मैंने कहा हम ये काम करते हैं। और कहा कि तेरे चेहरे से, तेरे जिस्म से मुझे गुर्बत महसूस हो रही है, तू चाहता है कि तमंगरी मिल जाए, तू चाहता है कि मखलूक की तू खिदमत करे, और चाहता है जिसको देखे वो रंगा जाए, जिसको दे वो रंगा जाए, जिसको पुकारे वो रंगा जाए, तू चाहता है? कहा मैं चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं। तो कहने लगा ऐसा कर, 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख और रोजाना, और 625 दिन लिख, और घुलने वाली स्याही से लिख। ये घुलने वाली स्याही का मेरा इजाफा है, घुलने वाली स्याही से लिख, क्योंकि पहले था ही थी ही घुलने वाली स्याही, अब दूसरी स्याही आ गई जो मिटती नहीं है। घुलने वाली स्याही से लिख और किसी बहती नदी में डाल, बाग पानी में घुलने वाली स्याही के साथ, और नदी में डाल के कहे ये 625 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मौकला मेरा साथ दो, मैंने इंसानियत के लिए कुछ करना है, मैंने मखलूक के लिए कुछ करना है, मैंने लोगों के दर्द और गम का साथी बनना है, दुखी इंसानियत, लोग बहुत दुखे हैं, मेरा साथ दो। मैं इस तरह की बातें करके ना रोज एक तावीज नदी में बहा दिया कर, और 625 दिन बहा, और हर नमाज के बाद 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, कोई नमाज ना चुके, और 625 दिन पढ़, 625 दिन पढ़, दो साल लग जाए अंदाजा, दो साल के करीब। कहा कि बस मैंने उसकी बात सुन ली, गमों का मारा, गुर्बत का मारा, तंगदस्ती का मारा हुआ था, और तो कोई सहारा था नहीं, तो मैंने 625 बार बिस्मिल्लाह भी शुरू कर दी, साथ मेहनत मजदूरी भी करता था, और 625 बार लिख के बहाना भी शुरू कर दिया। कुदरती मेरे रास्ते में एक नदी आती थी पानी की, उस नदी में मैंने बहाना शुरू कर दिया और बस ये काम शुरू कर दिया। अपने साथ में वालिद का साथ भी देता था, अपना साथ भी करता था। कहने लगा इसी तरह करते करते जिस 625 दिन गुजर गए, मुझे इस चीज का इतना मजा आया और इसकी इतनी लज्जत मिली, कहने लगे कि मैंने चाहा कि इसको ना छोड़ूं। दिल में ख्याल आया, उन्होंने तो 625 दफा बताया था, तो फिर कहने लगे अगर उन्होंने बताया भी था तो कौन सी हद है, मैंने इसको फिर से लिखना, फिर से करना, फिर से इसको बहाना, और ये सिलसिला मेरा जारी रखा, मैंने जारी रखा। बस अब कह रहे मैं ये सिलसिला जारी रखा, मैं चलता रहा, करता रहा। एक दिन की बात है कि मैं मिट्टी लेने गया, कुम्हार की एक मखसूस मिट्टी होती है, कहा मैं मिट्टी लेने गया, जुबान पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा था हर कुदाल पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता था, हर कदम पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता था, हर घूंट पे और हर कतरे पे और हर कदम पे हर सांस पे मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकलती थी, तो कहा कि वो ऐसी मेरी रगों में रच बस गई थी, ऐसी मेरी रगों के खून के कतरे कतरे में बिस्मिल्लाह ऐसी रच बस गई थी कि मेरी अकल दंग हैरान। कहा कि मैं कुदाल मार रहा था मिट्टी को खोदने के लिए, कुदाल मार रहा था तो मिट्टी सख्त थी। कहा कि मेरे अंदर ना फिर मारी, वो सख्त थी, मिट्टी ना टूटी, क्योंकि कुम्हार की मिट्टी सख्त होती है, इसमें रेतीली मिट्टी नहीं होती। कहा कि मुझे गुस्सा आया, मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जोर से पढ़ा ना, ऐसे मारा तो मेरी कुदाल जाके एक ऐसी चीज पे लगी जैसे कोई धात हो और मेरी कुदाल उसके अंदर फंस गई। कोई लोहा निकल आया है, क्या निकल आया? तो कहा मैंने जब कुदाल को खींचा तो वो सारी चीज एकदम बाहर आके गिरी, तो एक सोने का बहुत बड़ा टुकड़ा था। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा पता नहीं ये कहां से निकल आया। तो खैर मैंने उसको एक तरफ रख दिया, और एक तरफ रखने के बाद कहा कि मैंने अपनी मिट्टी ली, उसको मिट्टी के अंदर दबा के वालिद के पास लाया कि अब्बा ये आज सोने का टुकड़ा ऐसे ऐसे वाक्य के साथ निकला है, आप बताइए क्या होगा। कहा कि मेरा वालिद अनपढ़ आदमी था और वह इन चीजों को मानता भी कम था। उसने कहा बेटा सोना है हमारी हैसियत से ज्यादा। कहा कि मेरे वालिद ने उठाया तो उसके बूढ़े हाथ ना उठा सके, इतना वजनी टुकड़ा था, उसके बूढ़े हाथ ना उठा सके। और कहने लगे कि मैंने उसको उठा के रख दिया। अब हमारे कुदरत का निजाम देखें, हमारे अंदर वो सोने का टुकड़ा उतरा भी ना और हम भूल गए कि निकला था या निकला, हम रोज रोज ही अपनी मजदूरी कर रहे हैं, वो सोने का टुकड़ा उठा के रख दिया। घर के हर फर्द को पता था कि वो सोने का टुकड़ा है और इतना बड़ा डला है, इतना बड़ा टुकड़ा है कि मेरे वालिद के बूढ़े हाथ उसे न उठा सके, इतना वजनी है। कहने लगे मैंने उसको रख दिया। कुछ ही अरसे के बाद वो बाबा जी फिर मिले, जिन्होंने मुझे कहा था जंगल में मैं लकड़ियां लेने गया था, कहा तुझे बिस्मिल्लाह की तासीर मिल गई है और बिस्मिल्लाह की ताकत मिल गई है, तो उस सोने को इस्तेमाल कर, खुद भी खा, गरीबों को सदका जारिया कर, वो सोना है, अगर इस्तेमाल ना की अल्लाह फिर बिस्मिल्लाह की तासीर छीन लेगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना शुक्र में शामिल है। तूने बिन मांगे, तूने बिन चाहे, तू बगैर तलब के लिए है, किसी से छीना तो नहीं है, वो शुक्र में शामिल है, उसको इस्तेमाल कर। कल लगे मैंने गया और वालिद को जाके ये बात बताई कि ऐसे ऐसे वो बाबा जी फिर मिले थे और मुझसे कहने लगे कि उसको इस्तेमाल कर। कहा कि मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है बेटा। कहा कि मैंने उसको पुराने कपड़ों में लपेटा, खच्चर पे बैठा, एक सुनार के पास गया, और सुनार के पास जब गया था, सुनार ने मुझे एक ऐसी नजरों से देखा जैसे हकारत की नजर, ये गरीब कुम्हार, इसका सुनार से क्या ताल्लुक, इसके घर के तो रोटी पूरी नहीं होती, इसके घर के खराजात और गुर्बत है, दूसरे को जानते थे, एक छोटी सी जगह पे रहते थे, ये छोटे से गांव कस्बे एक दूसरे को अच्छी खाना जानते हैं। तो कहा जब मैं उतरा ना तो मैंने कपड़े से लपेट के कोई चीज जो थी उसके सामने रख दी, मैंने कहा ये सोना खुदाई के दौरान निकला है, आप देखें कि मेरा शक है ये सोना है या क्या है। तो कहा जब उसने लफ्ज सोना कहा, तजस्सुस की नजरों से उसने पुराने कपड़े को लपेटा, पुराने कपड़े को खोला, खोलने के बाद उसने कुछ चीज उठा के उसको रगड़ी, कसौटी होती है उसको रगड़ने की, रगड़ के देखा तो उसकी आंखों में चमक थी, ये कहां से लाए, कहने लगा मैं खुदाई मिट्टी करने गया था, वहां से मिला। कहा कि तुझे पता है यह कितना कीमती है, यह कितना कीमती है, और तुझे पता है इसकी कीमत कितनी है? कहा मुझे पता नहीं इसकी कितनी कीमत है। कहा कि तू नहीं, तेरी चार नस्लों का रिस्क इसमें है, और रिस्क नहीं शहनशाहियत भी है, कुशादगी भी है, वसत भी है, महलात भी है, माल दौलत भी है। कहा मुझे बाबा जी ने कहा था कि इसको बेच के ना खुद भी खा और गरीबों को खिला, आप इसके पैसे मुझे दे दे। कहा मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, ना मेरे पास है, ना इस पूरे शहर में किसी जरगर जौहरी के पास इसके पैसे हैं। हाँ तोल लेता हूं, इसकी रकम तय कर लेता हूं, तो मुझे दूसरे तीसरे दिन आके रकम ले जाया कर। उन्होंने कहा ठीक है। उसने तोल दिया, इतना है, रकम लिख दिया और कहा कि मुझे उस दिन इतने पैसे दिए कि मैं पैसे लेके काम किया। मैंने उसी पुराने कपड़े में वो पैसे बांधे, रकम बांधी, वालिद के पास आया तो मैंने कहा वालिद साहब को सारा किस्सा सुनाया, और मेरे वालिद ने सारा किस्सा सुन के फरमाया बेटा ये रकम इतनी। कहा कि पूरा घर आके उसको देखे, हाथ लगाए, पूरा घर आके उसको देखे, आज तक उन्होंने इतनी रकम देखी ही नहीं थी, आज तक उन्होंने इस रकम को परखा ही नहीं था कि इतनी रकम भी कभी हो सकती है, इतना माल और दौलत भी कभी किसी को मिल सकता है, और इतनी दौलत, इतनी नेमतें, इतनी चीजें भी कभी किसी को हासिल हो सकती हैं। तो कहा फिर हमारे घर में खुशहाली आ गई। कहा कि हमने समझा कि सब कुछ यही है। एक दफा फिर बाबा जी मिले, मुझसे कहने लगे तूने बिस्मिल्लाह की कदर नहीं की, बिस्मिल्लाह की कीमत को नहीं जाना, बैठ जा और बैठ के 600 दफा 625 बार बिस्मिल्लाह इस नियत से पढ़, या अल्लाह दुखियारे और गम के मारे लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जे कर दे। बस कहा कि मैंने पढ़ा, फिर लोग आना शुरू हुए, फिर मेरे जी में आया कि लोगों को क्या दूं। कहा मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी पे पानी मार देता हूँ, किसी पे मिट्टी मार देता हूँ, किसी को फूंक मार देता हूँ, जिसको करता हूं उसका काम हो जाता है। हमने तो 625 बार बिस्मिल्लाह की कहानी, बिस्मिल्लाह के मुशाहदे और बिस्मिल्लाह के फायदे देखे ही नहीं है। शायद मैंने आज पहली दफा यह किस्सा सुना है आपको। 625 बार बिस्मिल्लाह की तासीर और 625 बार बिस्मिल्लाह का कमाल और 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकत, तो हम तो वो पहचान ही ना सके कि ये है क्या और इसकी ताकत क्या है और इसकी तासीर क्या है और इसकी ताकत क्या है और इसकी तासीर क्या है और इसकी ताकत क्या है। हमें क्या पता, मुझे भी पता नहीं है, तो मुझे पता नहीं मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ही पता नहीं मैं आपको क्या बताऊं। वह एक ऐसी जन्नत है अल्लाह की जन्नतों में से जिसके हर पत्ते पे बिस्मिल्लाह लिखी है, हर पत्थर पे बिस्मिल्लाह लिखी है, हर कतरे पे बिस्मिल्लाह लिखी है, हर फरिश्ते के पर पे बिस्मिल्लाह से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर हर चीज पे, और वो जन्नत बिस्मिल्लाह है और उसको मिलेगा उसको जो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। ये नेमतें, ये सआदतें, ये अताएं, ये बरकतें, तो उसूल है बंदा अपने आप तक रखे, जो दुनिया का उसूल है बंदा अपने आप पर रखे। मुझसे पूछे 7 बार सूरत फातिहा के लिए मैंने क्या जान मारी थी। 2020 में हवेली में कोरोना के दौरान मेरे प्रोग्राम आते थे, रमजान का शायद महीना था, तो पता नहीं वो मेरे प्रोग्राम पढ़े, पता नहीं किस तारीख को, मुझे तारीख याद नहीं है, 8-9 कौन सा 8-9 रमजान 2020 का वो मेरे प्रोग्राम 2 पढ़े हैं नेट पे, जो मैंने अपनी कहानी सुनाई कि मैंने इस अमल के लिए कितनी जान मारी, کہ کھانے کے دوران 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے کمالات، جو پڑھے گا کھانے کے دوران 7 آسمانوں کے خزانے، 7 زمینوں کی نعمتیں، 7 آسمانوں اور زمینوں کی برکات اور 7 آسمانوں اور زمینوں کی کائنات اس فرد کو ملے گی، اور وہ فرد ان 7 آسمانوں اور زمینوں کی عنایات اور برکات کو پائے گا. جو فرد کھانے کے دوران جو بندہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. تو مجھے تو چاہیے تھا کہ یہ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل میں اپنے لیے رکھ لیتا، اپنی نسلوں کے لیے رکھ لیتا، چھپاتا، کوئی نہیں بتاتا. عمومی اصول ہے. میں نہیں کہتا کہ میں ہی بتا رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے مجھ سے کہیں عظیم تر ہیں، لیکن عمومی ریت روایت یہی ہے، کوئی نہیں بتاتا. جس کے پاس ہے بس اپنے لیے ہے، جس کے پاس ہے بس اپنے لیے ہے، اور جس کے پاس ہے بس اس کی نسلوں کے لیے ہے، کوئی نہیں بتاتا. میری کوشش یہی ہے کہ میں بتاؤں اور آپ کو بتاؤں. اور یہ جو 625 بار کا عمل ہے، سال ہر سال سے ہم کر رہے ہیں، اور سال ہر سال سے دنیا کو اس کا نفع اور فیض مل رہا ہے. سال ہر سال سے جس کی جیب میں یہ کاغذ ہے، جس کی جیب میں یہ عمل ہے، جس کے گھر یہ عمل ہے، اس کی نسلوں کے لیے کیا غیبی نظام، کیا غیبی خزانے، کیا برکات، کیا رحمتوں کا نظام اس کو اور اس کی نسلوں کو ملا ہے اور ملا ہے. آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے 625 بار کے نقش کا عمل کیا ہے، ان سے پوچھیں جنہوں نے 625 بار کا نقش اپنے گھر میں لٹکایا ہے یا اپنی جیب میں رکھا ہے، لکھ کے ان ساتوں میں جو آج ہماری ساتھ ہے، آپ لکھ کے بھی لائے ہوں گے، آج بھی اس کو انشاءاللہ عمل ہوگا اور اس کو لکھتے رہیں گے. ان سے پوچھیں کہ ان سے کہیں کہ کیا حال ہے. وہ پھر جب اس کے فائدے بتانا آپ کو شروع کریں گے اور اس کے نفع بتانا شروع کریں گے، حیرت کا ایک جہان ہے، حیرت کا ایک سمندر ہے. آپ کو علم ہے کہ میں نے صرف 3 دن میں کسی چیز کا فیصلہ کروانے کا ایک عمل بتایا ہوا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کی، اور اس کے بعد 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے پڑھیں. اسی طرح 12 دگانے اور 12000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے، ہر دفعہ 1000، پھر 2 نفل، پھر 1000، پھر 2 نفل، پھر 1000، پھر 2 نفل، پھر 1000. 3 دن میں فیصلے ہوتے ہیں. کوئی ایسا ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے ابھی تیرے فیصلے نہیں کرنے، تو تھوڑی چیز مانگ رہا ہے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہوں. جو چھوٹی چیز مانگ رہا ہے، میں اس سے بھی بڑی چیز دینا چاہتا ہوں. کچھ ایسے ہوں گے، لیکن میں نے 3 دن میں اس کے فیصلے ہوتے دیکھے اور 3 دن میں اس کی برکات کو پاتے دیکھے. سالوں سے بتا رہا ہوں، سالوں سے بتا رہا ہوں. روم سپر پاور، اس کے بادشاہ کا سر درد نہیں جاتا تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک ٹوپی دی، وہ پہنتا تھا، سر درد ختم ہوتا تھا. دیکھا تو اس میں ایک تعویذ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشر حافی وہ شخص تھا کہ جو سارا دن شراب پیتا تھا، روز اس کی راتیں شراب خانے میں گزرتی تھی. ایک دفعہ شراب کے لیے جا رہا تھا تو ایک کاغذ دیکھا، اس کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا. دیکھا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اس کو اٹھایا، اس کو پاک کیا، دھویا، اور پیسے جو جیب میں شراب کے لیے تھے ان سے خوشبو خریدی، اس اللہ کے نام کو خوشبو دار کیا، کسی اونچی جگہ رکھا. شراب خانے میں جا کے کہنے لگا، روز ہی آتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، شراب پیتا ہوں، आज उधार कर ले। तो शराब खाने में उसने उधार कर लिया। रात को वक्त के वली ने, बहुत बड़ी हस्ती ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा कि एक पैगाम है। वो पैगाम क्या है कि जाके कह दो बशर हाफी को, तूने हमारे नाम की कदर की, हमने तेरी कदर की, तूने हमारे नाम को धोया, हमने तुझे गुनाहों से धो दिया, तूने हमारे नाम को खुशबूदार किया, हमने तुझे विलायत की खुशबू दे दी, तूने हमारे नाम को ऊंचा किया, हमने तुझे ऊंचा कर दिया और तुझे अपना दोस्त और वली बना दिया। ख्वाब आया, जिस दुर्वेश को बेदार हुए तो कहने लगे, ये बेशर हाफी तो शराब के नशे में हर वक्त होते हैं, उसके लिए ख्वाब कैसे हो सकते हैं। फिर सो गए, फिर यही ख्वाब आया, फिर सो गए, फिर यही ख्वाब आया। तो उठे और शराब खाने में उनको तलाश किया, घर ना मिले। शराब खाने में जाके बाहर से आवाज लगाई, बेशर मैं तेरे लिए एक पैगाम लाया हूं। और वो झूमते हुए जब बाहर आए शराब के नशे में, ये पैगाम सुनाया। पैगाम सुना तो एकदम गिशका के गिर गए, और जब उठे तो अल्लाह ने अपनी विलायत का मकाम दे दिया। और हाफी क्यों कहते हैं? हाफी कहते हैं नंगे पांव के चलने वाले को, के नंगे पांव के चलने वाले को, यानी जिस जगह वो चलते थे बकरियां मेंगनियां नहीं करती थी, गधे खच्चर लीद नहीं करते थे, के बिशर हाफी के चलने के रास्ते हैं, हमारी वजह से उसके पांव खराब ना हो जाएं। जानवर भी उसका हया करते थे बिस्मिल्लाह की वजह से, जानवर भी उसका हया करते थे। ये जो नक्श है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 625 का नक्श, मुझे जिंदगी का एक बहुत अरसा गुजर गया, मैं लोगों को बता रहा हूं और इस अमल को करा रहा हूं। इस अमल के लिए बकायदा कागज छपा है, आपके पास कागज कहाँ है दिखाएं, इसका बकायदा कागज है, ये लिखा, ये छपा हुआ है। और जो हमारी पूरी दुनिया में बैठे हैं वो नेट से डाउनलोड कर लेते हैं पूरा 625 बार, ताकि आपको खाने पूर करने में सहूलत रहे और आपको मुश्किल ना हो, आपको परेशानी ना हो, आपको गिनना ना पड़े। ये बकायदा आपके लिए इसका इंतजाम किया है। मेरी कोशिश यही है हर आने वाले को सहूलत के तौर पे हर चीज दे दी जाए, यही कोशिश है। ये अमल बहुत ताकतवर अमल है और ये अमल बहुत हैरत अंगेज अमल है, बहुत ज्यादा तंग। आज हम करेंगे, हमारे और पैकेज भी हैं, इसको अमल को हम अमल में लाएंगे। सारा साल आप हजरात इंतजार करते हैं और सारा साल के बाद इस अमल को, इसमें बड़ी ताकत है। लेकिन एक एक बड़ी खास बात जरूर कहूंगा, आप कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी कोने में अमल कर रहे हैं और आपका साथ ताल्लुक तस्बीखाने के साथ है, आपका इत्तेसाल तस्बीखाने के साथ है, आपकी निस्बतें तस्बीखाने के साथ हैं, वह इंफरादी अमल नहीं होगा, वह इज्तमाई अमल होगा। और उस इज्तमाई अमल की ताकत और तासीर हैरत अंगेज तौर पे है, उसकी ताकत और तासीर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उसकी ताकत और तासीर। ये जो आप बिल बैठ के अमल करेंगे, इसकी ताकत और तासीर इसका गुमान और ख्याल नहीं कर सकते कि इसकी ताकत और तासीर क्या होगी, हम सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर जाए, नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दानावार जी और मर्दानावार मर जा। दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा, इस बहरे बेकरा में साहिल की जस्तजो क्या, कश्ती की आरजू क्या, डूबा और पार कर जा। अकरी की कोशिश है, आपके साथ मिन्नत कर करके, मिन्नत कर करके चीजें आपकी खिदमत में पेश करें। जैसे मरीज की मिन्नत भी करते हैं, खुशामत भी करते हैं, कहते मेरा दिल नहीं चाहता, उसे पता है अगर नहीं खाएगा निढाल हो जाएगा, मरीज हो जाएगा, और बीमार तो पहले है और बीमारी इसको अपनी लपेट में ले लेगी, तो इसलिए फिर क्या करते हैं, उसकी मिन्नत करते हैं, उसकी खुशामत करते हैं, उसकी दरखास्त उसके सामने करते हैं, और मिन्नत खुशामत और दरखास्त करने के बाद उस बंदे को फिर ग़िज़ा खिलाते हैं। हम सारे मरीज हैं, हम सारे मरीज हैं। अब कई मिन्नतें करता है, चीजों का एहतमाम खुद करके देता है, खुद करके देता है। कहने लगा मेरी तख्ती नहीं है, उसने कहा तख्ती मैं तेरी, मैं उसको गाचनी लगा देता हूं। कह रही मेरी पेन में स्याही नहीं कि मैं भर देता हूं। कहने लगा मेरी कलम टूटी हुई है, मैं छील देता हूं। मेरे बस्ते का कायदा फटा हुआ है, मैं नया ला देता हूं, अलिफ अनार वाला कायदा। उसने कहा हर चीज आज वहां तेगो कफन बांधे हुए जाता हूं, आज वहां तेगो कफन बांधे हुए जाता हूं, उज्र मेरे कत्ल में अब लाएंगे क्या। जब जल गया है पैरहन तो दिल भी जल गया होगा, कुरेते और राख जुस्त जो क्या है। कहने लगा मैं रोज जाता था, कहता था मैं मुझे कत्ल करो, मैं आपके लिए मरना चाहता हूं, मैं आप पे जान देना चाहता हूं, तो कहता मेरे पास तलवार नहीं है। फिर एक दफा मैं तलवार ले गया, तो तलवार लेने के बाद कहने लगा फिर कफन कहां से लाऊंगा। फिर आज कहने लगा आज वहां तेगो कफन बांधे हुए जाता हूं, आज तलवार भी है और कफन भी है, उज्र मेरे कत्ल में अब लाएंगे क्या। हाँ हजरत नासे मुझे फरमाएंगे क्या, हजरत नासे मुझे फरमाएंगे क्या, जख्म भरने तरह नाखून न बढ़ाएंगे क्या। मुझे कहता है अपने नाखून मेरे काट दिए तो जख्म को छील देता है, इधर जख्म भरेंगे इधर नाखून बढ़ाएंगे, मैं इन जख्मों को तेरी यादों में कभी जाने नहीं दूंगा, नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की जेरो जबर करे है, एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। जख्म बढ़ने तलक नाखून न बढ़ाएंगे क्या। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कायनात के पोशीदा राज होते हैं। एक साहब कहने लगे मुझे एक जिन मिला, एक साहब ने मुझे अपना वाक्या सुनाया, कहने लगे मुझे एक जिन मिला, वो बहुत ताकतवर जिन था, बहुत ताकतवर जिन, तो कहा कि तूने ये ताकत तो अल्लाह ने तुम्हें दी हुई है, लेकिन मजीद ये ताकत कैसे हासिल की दी है, कैसे हासिल की है, उस जिन से पूछा, तो उसने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, कहा कि मेरे दादा ने कहा बेटा फला गार में जा, और गार में जाके फला गार में चिल्ला कर, तो कहा मैं उस गार में गया, मैंने चिल्ला किया और मुझे फरमान लेगा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चिल्ला कर, कहा कि गार के हर पत्थर को मैंने लेके हर पत्थर पे 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता था, मेरी जिंदगी का एक वक्त गुजर गया, एक अरसा गुजर गया, अब आलम यह है मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूं वो कीमिया बन जाती है, वो कीमिया बन जाती है। बहुत बड़ा राज है जो अबकरी ने खोला है 625 बार का। आप अबकरी से यह राज दावा नहीं करता, अबकरी से पहले आप कहीं सोशल मीडिया में अबकरी ने जब से यह राज 625 बार लोगों को दिया है, इससे पीछे किसी सोशल मीडिया में मुझे शायद नहीं मिला, मेरी तलाश में कमी है, मैं दावा नहीं करता, एक राज है जो लेके अपने साथ चले जाते थे। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी दरबार है, मेरा वहां जाना हुआ तो मुझसे कहने लगे कि आपने 625 दफा बिस्मिल्लाह नेट पे डाल दिया। मैं जी लोगों की खिदमत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए डाला। कहा यह आम लोगों को नहीं देना था, हमारा यह खानदानी राज चला आ रहा है और हम खानदानी राज हमारे साथ है, हम आम लोगों को नहीं देते और आम लोगों तक इसका निजाम नहीं है, हम नहीं देते। मुझे सिंध में, रानीपुर में गया तो एक सिंध में मेरे साथ सिंध के कुछ बड़े लोग थे, मुखलिसीन थे, हमारा काफला था। वहां एक दरबार पे गए तो उनके गद्दे नशीन के यहाँ हमारी मुलाकात तय थी। जब वहां गए तो वहां एक पीर साहब बैठे थे, हुक्का पी रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि वो अपकरी वाले पीर आए हैं, लाहौर वाले, एकदम मिले, कहने लगे आपने हमारा राज आम कर दिया। और वो शेख इब्ने अरबी का जो शजरा है वो मैंने नेट पे डाला। कहा हमारा ये सदियों और नस्लों का राज था, आपने इतना इसको आम कर दिया। और कुछ अल्फाज और भी कहे कि ऐसे लोगों को आम कर दिया जो जिनकी हैसियत नहीं थी या जिनको ये नहीं मिलना था। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि मैंने ये ठीक है आम किया है, लेकिन मेरा ये मुताबिक मेरे कमली वाले का हर फर्द खास है। उसने कहा था ये खासों के लिए है, आमों के लिए नहीं है। लेकिन मैं कहा मेरे मदीने वाले का हर उम्मती खास है और मेरे मदीने वाले के हर उम्मती की अल्लाह की बारगाह में हैसियत है कलमे पढ़ने वाले की, इसलिए मैंने इसको आम कर दिया। कितनी चीजें ऐसी हैं जो अबकरी ने आम की और आम लोग उसको अपने छुपा छुपा के रखते हैं या अपनी खास किताबों में ब्याजों में लिखते हैं या फिर अपने खास कोई बंदे हो उनको देखे जाते हैं। इन्हीं राजों में ये 625 बार बिस्मिल्लाह का राज है, इन्हीं राजों में 625 बार बिस्मिल्लाह का राज इन्हीं राजों में से है, इन्हीं राजों में। फरमाया जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजिल हुई, मुस्तनद रिवायात से बयान कर रहा हूं, एक धमाका हुआ, सारी कायनात ने सुना और अल्लाह के आसमान में से एक दरवाजा खोला जो इससे पहले कभी नहीं खुला था और उसमें एक नेमत मिली जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसके बाद वह दरवाजा बंद हो गया, फिर कभी नहीं खुलेगा। और जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजिल हुई थी, शैतान ने चीखे मारी, दीवारों के साथ टकरे मारी, अपने बाल नोचे और अपने सर पे राख डाली और ये कहा कि आज वो चीज नाजिल हुई है जो इंसानियत के लिए नफा मंद है, ए काश ये नाजिल ना होती। मैंने रिवायत का मफहूम बताया आपको, ए काश ये नाजिल ना होती। इतनी अजीब गरीब चीज, ताकतवर चीज और लोगों को, इंसानों को मिल गई। शैतान रोया, जाग रहे, ख्याल करना बारिश हो रही है, कहीं हमारा बर्तन उल्टा ना हो जाए, कहीं एक कतरा भी ना, बारिश का ख्याल, बारिश हो रही है रहमतों की, बरकतों की, अल्लाह के नाम की, कहीं ऐसा ना हो सो जाए, बर्तन उल्टा हो और एक कतरा भी उसमें ना जाए, वो खुदा ना खास्ता आए हैं कहीं खाली ना चले जाए। अल्लाह आपको हरा भरा रखे, अल्लाह सबको हरा भरा रखे, सबकी खैर सबका भला। ये छोटे अमल हैं और इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तासीर है, ये छोटे अमल हैं इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ताकत है। कहने लगे कि मैं मकली के कब्रिस्तान में एक अमल कर रहा था और उसके हर अमल के साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना था, सूरत फातिहा का अमल कर रहा था और उसके हर सूरत फातिहा के साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना था। कहा कि मैं कई दिन हो गए पढ़ रहा था, दिन रात एक करके पढ़ रहा था, सन्नाटा था, वीराना था, बिच्छू और सांप थे, भेड़िए गिदड़ थे अजीब व गरीब बलाएं थीं, लेकिन ये कलाम खुद मेरी हिफाजत कर रहा था और कहा। कुछ दिनों के बाद एक साहब मेरे साथ आके बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। मैं उनसे बातें करने लगा, ऐसी मीठी बातें, मेरे सारे गम को धो दिया, मेरे सारे दुख को धो दिया, ऐसी मीठी बातें। तो कहा कि मैंने पूछा आप कौन है? कहा मैं वो तेरा साथी हूं जिसको तू तलाश कर रहा था, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का असली वजूद हूं, वजूद हूं खुद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का असली वजूद। वो साहब कहने लगे मैं इतना अरसा वो गिजाएं, फीकी गिजाएं, बिल्कुल ऐसी चीजें खा खा के मेरे जी में आया कि मैं कुछ जाके अच्छी चीज खाऊं। चिल्ला चूंकि मुकम्मल हो गया था, उसकी तासीर भी मिल गई थी। कहने लगा मैं जाके वो चीज लग खाऊं। कहा कि मैं शहर की तरफ चला, पैदल चल रहा था, आगे कुछ छोटे छोटे खोखे थे जिन पे रबड़ी लिखी हुई थी, और कहा कि मैंने उनसे कहा कि रबड़ी दो। उनके पास मिट्टी का कोजा था, उन्होंने डाल दी, कागज रख के ऊपर धागा लपेट दिया। कहा मुझसे सबर ना हुआ कि मैं कहीं दूर जाके खाऊं, मैं साथ ही बैठ गया, और जब मैंने खाया देखा तो वो तो सारी चीनी थी, अब मेरे जौक के खिलाफ थी। और कहा कि फिर मैंने कुछ दो बच्चे जा रहे थे, मैंने उनको दे दिया, वो खुशी खुशी लेके चले गए। मेरे जौक में था कि मैं शुद्ध कुछ खाऊं। तो अजीब गरीब अमल है, बहुत अनोखा अमल है। कहने लगे कि मैंने पता चला कि फलां जगह कच्चा किला है और उस कच्चे किले में लोग जाके अमल करते हैं, तो मैं जाके वहां कच्चे किले में बैठ गया। हर तरफ वीरानी थी, हर तरफ हैरानी थी और हर तरफ वहशत थी, कुछ भी नहीं था। मुझे वहां 40 दिन बैठना था और 40 दिन के बाद फिर इस अमल की तासीर मिलनी थी। तो 40 दिन पढ़ने के बाद कहने लगे कि मुझे उसकी कोई तासीर नजर ना आई। तो कहा मैं आ रहा था 40 दिन का मुजाहदा, तरके जलाली, तरके जमाली, तलके लज्जात, और 40 दिन का मुजाहदा जिस्म निढाल हो चुका था। अमल पूरा कर करके आते आते आगे देखा एक बाबा जी हैं, बड़े कमजोर, बड़े जईफ बहुत ज्यादा, और उनके पास गठड़ी है और वो बेचारे गिरते पड़ते उस गठड़ी को उठाए जा रहे हैं और चीख रहे हैं। कोई मेरे जी में आया इनकी गठड़ी मैं ले लूं, पर जो गठड़ी ली तो ऐसे था जैसे उसमें तो पत्थर है और मेरी जान जाए। क्यों? मैं तो पहले निडालियों का मारा हुआ था, 40 दिन के मुजाहिदों का, 40 दिन के चिल्लों का, और 40 दिन की जो है कोई खुराक नहीं, कोई गिजा नहीं, और दिन रात की मेरी पढ़ाई थी और दिन रात की मेरी मुशक्कत थी। कहने लगे पहले ही मैं बहुत ज्यादा निढाल हो चुका था। कहा कि मेरे जी में आया फेंक दो, बाबा दुआएं दे रहे थे, मेरे जी में आया फेंक दो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बाबा जी कहाँ पहुंचाना है? कहा बेटा स्टेशन पे पहुंचाना है, और स्टेशन तो बहुत दूर था। गिरता पड़ता गया स्टेशन पे, मैं जी में आया बाबा जी यहां पहुंचा दूं। कहने लगे नहीं, उसके पार पहुंचाना है। कहा मेरे एक एक तन में जो दुखन थी जो और बढ़ गई, और मेरे निढालियां, मेरी कमजोरियां और मेरे जिस्म की और बढ़ गई, लेकिन मंजिल पे पहुंच के मैंने बाबा जी को वो कछड़ी दी। बाबा जी भी साथ चल रहे थे और चलते चलते बैठ गए, तो मैं जाने लगा। कहने लगा बेटा मेरे साथ बैठ जाओ, और बैठने के बाद कहने लगे क्या करने आए थे? मैंने बाबा जी यहाँ कुछ अल्लाह का नाम लेने आया था, उसकी तासीर मिल जाए, उसका कमाल मिल जाए, ये आया था। कहा कि इतनी मुशक्कत? मैंने कहा बाबा जी, उसने कहा बाबा जी इतनी मुशक्कत के बाद ही तो सुना है कुछ मिलता है। कहा तो जैसे कई आए थे, आखिरी वक्त यही गठड़ी वाला होता है, कई मेरी गठड़ी फेंक के चले गए, जो फेंक के चले गए थे खाली गए, तूने गठरी को मंजिल तक पहुंचाई, मैं उस अमल का मौक्कल हूं। कहा मेरी गठरी को लेके चलते थे, ये मेरी गठरी आखिरी आजमाइश होती थी इस अमल की, आखिरी आजमाइश होती थी इस अमल की। और मैं हर अमल करने वाले को मिला हूं, हर अमल करने वाले को मिला हूं। और इस गठरी में पत्थर ही पत्थर है निढालियों का, कमजोरियों का। मुझे भी फेंक जाते थे, गठरी को फेंक जाते थे, फिर जाके कहते थे हम उस पुराने किले में चिल्ला करके आए, मिला कुछ नहीं, आखिरी वक्त यही मिलने का था। अमल कभी कभी इम्तहान भी लेता है, अमल कभी कभी आजमाइश भी लेता है, अमल कभी कभी तरक्की आजमाइश भी लेती है, कभी इम्तहान भी लेती है। इंसान पर उस इम्तहान को अपने लिए नागवारी समझता है, उसी नागवारी के पसे पर्दा में जिंदगी की तरक्कियां पड़ी होती हैं, उसी नागवारी के पीछे जिंदगी के बड़े बड़े उरूज और जिंदगी के बड़ा बड़ा कमाल और हैरत अंगेज रूह की दुनिया, मन की दुनिया, कमाल की दुनिया, वजद की दुनिया, विजदान की दुनिया पड़ी होती है। हाँ, मैं हंस को हर को मिलता हूं, और जब मिलता हूं और यही गठड़ी उठवाता हूं और सबको स्टेशन का कहता हूं, सब छोड़ के चले गए, सब फेंक के चले गए। मैं गठड़ी में बैठ जाता था, वो चले जाते थे, फिर लोगों को कहते थे हम गए थे, हम गए थे, हमें मिला कुछ नहीं। वो छोटा सा इम्तहान का जो वक्त है ना, वही सारी चीजों का नचोड़ है। समझ ले, खजाने की वही चाबी थी। मैं चाबी देने की कोशिश तो करता हूं, पर मेरी चाबी के पीछे पत्थरों की गठड़ी होती है, मेरी चाबी के पीछे पत्थरों की गठड़ी होती है। अजवेरी माल में आए हैं, छोटी मोटी नागवारियां मेरे ख्याल में तो वो भी नहीं है। वजू खाने भी वसी हैं, बैतुल खला भी वसी हैं, और सफाई करने वाले, खिदमत करने वाले आपके खाने के लिए। आज भी मैं मुसलसल मशवरे में बैठा रहा खाने और लंगर के लिए, तो कोई पत्थर की गठड़ियां तो मुझे नजर नहीं आई। आपको कहीं आई हो तो बता दे। आज चीखो पुकारती, दो सांप निकले, वो बेचारी गौ थी, वो बेचारी डर रही थी, मुझे तो कहीं पत्थर की गठड़ी नजर नहीं आई। पर याद रखिएगा, पत्थर की गठड़ी के बगैर गुजारा नहीं होता, कोई ना कोई मशक्कत हो जाती है। एक दरवेश कहने लगे, मैं हज पे गया और मुझे शाही तौर पे हज पे बुलाया गया, शाही एजाज के साथ। तो मैंने कहा इस दफा मैं शाही एजाज के साथ जा रहा हूं, सुना है हाजी को कोई ना कोई एक आजमाइश और मशक्कत आ ही जाती है, जो ही उसकी कबूलियत की कुंजी और चाबी होती है। तो कहा कि मैं फिर हज करते करते एक लम्हा ऐसा आया जहां मैं जो रुला और जो मेरे ऊपर आजमाइश आई, वो सारे शाही एजाज कहां और मैं कहां, और मैं जो घूमा और फिरा और मेरा अंग अंग टूटा और मेरा अंदर सब सब कुछ खत्म। तो बाद में एहसास आया, हाजी के लिए कोई लम्हा ऐसा अल्लाह खुद लाते हैं, हाजी के लिए मेरा अल्लाह खुद ऐसा लम्हा खुद लाते हैं कि हाजी तेरी हज इसके बगैर कबूल नहीं, या इसके बगैर तो हमारे कुर्ब को नहीं पहुंच सकता, करीब से करीब तर नहीं पहुंच सकता। तो यहां तो कोई पत्थरों की गठड़ी मुझे हजवेरी महल में नजर नहीं आई, पर अल्लाह पाक करीम है, अल्लाह बगैर पत्थरों के गठड़ी के भी तो अता कर सकता है। यूं कहा, हम मुजाहिदा ना मांगे, हम कुर्बानी ना मांगे, आ जाए तो उस पर सबर करें, पर मांगे ना, आप पत्थरों की गठड़ी ना मांगते, कमजोर है हम तो, मेरे पर आ जाए तो शायद मैं भी ना उठा सकूं, हम पत्थरों की गठड़ी ना मांगे। पर अल्लाह पाक बाज़ोकात कभी खाने कभी पीने में, कभी कानों में कोई बंदा बदगुमानियां डाल देता है, कभी कानों में शक डाल देता है, कभी वसवसे डाल देता है, ये अंदर से वसवसे और बदगुमानियां आना शुरू हो जाती हैं। ये सारी बाज़ोकात पत्थर की गठड़ियां ही होती हैं। कोई दुनिया का बंदा कह देता है, कहां गए थे, कहां रहे, कहां फंस गए, क्या ये जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही बैठ के तुम घर नहीं कर सकते थे, यही बैठ के तुम ऑनलाइन नहीं कर सकते थे। लोगों की बातें भी है, मैं समझता हूं ये भी पत्थर की गठड़ियां हैं हमारे दौर की, पर अल्लाह ने जो मंजिल दी है तस्बीखाने की अबकरी की, और अल्लाह ने जो राहें दी हैं अबकरी की और तस्बीखाने की, मेरे मुताबिक ये मंजिल, ये राहें, ये रास्ते हैं बहुत जबरदस्त। क्या ख्याल है? आप ये देखें कि अल्लाह ने मुझे आपको किन राहों पे लगा दी है, आप ये देखें किन रास्तों पे लगा दिए, किन राहों पे लगा दिए, किन रास्तों पे। मैं खड़ा था यहां तो कनात के पीछे ना, ये जो तंबू लगे हैं दीवारें, इसके पीछे कुछ लोग जा रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे, अल्लाह वाले रास्ता दे दो, हट जाओ, यूं कर दो। मैंने कहा एक अपने साथ, मैंने कहा ये कुछ छोटी बात है, लोगों के मुंह में अल्लाह तो आया किसी नाम से, किसी बहाने से, ये भी कोई थोड़ी बात तो नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या अल्लाह ऊपर बैठा नहीं जानता कि ये मेरे बंदे लोगों को क्या नाम सुना रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, लोगों को क्या नाम बता रहे हैं, ये जानते हैं, खूब जानते हैं। मेरा अल्लाह सारी नेमतें, सारी अताएं, सारी चीजें, सारे राज खूब जानता है। ये तोहफे मिल रहे हैं, या बस एक बात फिर कहूंगा, मैं एक दफा मक्का मुकरमा में हज पे जाने का मौका मिला, एक ऊंची होटल में बैठा था, गालिबन उसकी 48वीं या 50वीं मंजिल थी, पहाड़ मक्का के नीचे नजर आ रहे थे। मैंने कहा पहाड़ों, तुमने अबू जहल को तो देखा होगा ना, और पहाड़ों तुमने बिलाल को भी देखा होगा, पहाड़ों ये बताओ अबू जहल की हर नजर एतराज की नजर थी, जाग रहे सो रहे, आपके साथ अगर कोई जाग रहा उसे मोहब्बत प्यार से जगा दे, आपके साथ अगर कोई जाग रहा उसे मोहब्बत प्यार से जगा दे, सो नहीं रहा वो, जाग रहा है। अबू जहल ने हर हर नजर एतराज की नजर थी, हर चीज को एतराज की नजर से देखा, नजर का फर्क है ना, नजर का फर्क है। और बिलाल ने हर नजर को मोहब्बत की नजर से देखा, उसने हर नजर में एतराज है, जहां से कोई चीज मिली एतराज है, कोई अंदाज है एतराज है, कोई चीज है एतराज है। कुरान ने, आका के फरमान ने अबू जहल के बोलों को, उसके अंदाज को, उसकी जिंदगी को बयान किया, एतराज ही एतराज है, शक ही शक है, बदगुमानी ही बदगुमानी है, वसवसे ही वसवसे हैं उसकी जिंदगी में। एक बिलाल था जिसने हुजूर को देखा और मोहब्बत और इश्क की नजर से देखा, अबू जहल गाली बन गया, बिलाल नेमत और सआदत बन गया। एक वो भी है जिसने देखा ही नहीं, वो हजरत ख्वाजा उवैस करनी है, देखा ही नहीं, हुजूर के नाम पे सिसकता रहा वो दरवेश, तड़पते रहे हुजूर के नाम के लिए, मचलते रहे, देखा ही नहीं है, और बिन देखे इश्क की मंजिलें तय कर गए, एक वो अंदाज भी है, एक वो है जो इतराज ही इतराज है, इतराज ही इतराज है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में एक दरवेश थे, उन पे हाल आ गया गुर्बत का, तंगदस्ती का, फाके का हाल आ गया। तो आखिरकार इतना हो गया कि एक दफा उन्होंने अपनी लौंडी को कहा, अगर मैं तुझे बेच दूं तू भी अच्छी जगह चली जाएगी, दो वक्त का खाना तुझे कुशादा मिल जाएगा, और तेरे पैसों की वजह से, तेरे जो पैसे मिलेंगे मुझे उसकी वजह से मेरा भी कुछ चार दिन अच्छे गुजर जाएंगे। तो लौंडी कहने लगी, तवज्जो तलब बात है, तवज्जो कीजिएगा। लौंडी कहने लगी, हजरत आप आका हैं, मैं गुलाम हूं, बेच दें, पर एक दरखास्त है, किसी ऐसे बंदे के हाथों बेचें जो मुझे इबादत में रुकावट न डाले, इबादत और तस्बीह में खलल न डाले। तो सोचते सोचते कहने लगे, इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके यहां तुझे बेच देता हूं, बड़े अल्लाह के पहुंचे वली हैं। लौंडी कहने लगी, वो अल्लाह के वली हो ही नहीं सकते, मैं नहीं मानती। कहा, तो वो नहीं है तो और कौन है? कहा, मुझे उन पे तीन एतराज है। अब वो एतराज गौर से सुने, मुझे उन पे तीन एतराज है। सबसे पहले वो लंगर का खाना खाते हैं, लंगर तो मसाकीन फुकरा का हक है, अल्लाह का दोस्त हलाल खाता है, वो लंगर में तो मसाकीन का हक खा रहा है। दूसरा, मैंने आज तक उन्हें किसी रोग तकलीफ परेशानी में और किसी आरजे में मुबतला नहीं देखा। ये तकलीफें परेशानियां तो अंबिया को आई, क्या वो नबियों से बढ़ के हैं? तीसरा एतराज यह है कि मैंने आज तक उनकी तारीफें ही सुनी हैं, उनके बारे में एतराज, गालियां, किस्से, कहानियां, शक, वसवसे, लोगों की बातें नहीं सुनी। एतराज तो अंबिया पे हुआ, खुद खुदा पे हुआ, वो अल्लाह नबी से बढ़ गए हैं, मैंने आज तक उनकी तारीफें ही सुनी हैं, मुझे वो अल्लाह के वली नजर नहीं आते। तीन एतराज किए। फिर सुने, पहला एतराज, फुकरा के लंगर में से खाना खाते हैं। दूसरा एतराज, सारा जहान उनकी तारीफ करता है, कोई उन पे एतराज नहीं करता, बहतान, शक, वसवसा, गाली। और तीसरी चीज यह है कि मैंने आज तक उन्हें सेहतमंद देखा है, खुशहाल देखा है, सेहतमंद देखा है आज तक उन्हें। तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह के बाद इसका सवाल का जवाब उन्हीं से जाके ही लेते हैं, जैसे वो फरमाएंगे वैसे करेंगे, क्योंकि जो दरवेश होता है वो हकीकत तक पहुंचता है, सुनी सुनाई पे अमल नहीं करता। उसने कह दिया तो ठीक है। अब ये दोनों चल पड़े हजरत की बारगाह में, हजरत से जाके यही अर्ज किया कि हजरत मेरे ऊपर हाल आ गया है गुर्बत का, तंगदस्ती का, जाग रहे? मेरे ऊपर हाल आ गया है गुर्बत का, तंगदस्ती का, तो मैंने इस लौंडी से कहा है मैं तुझे बेच देता हूं। तो कहने लगी, किसी अल्लाह वाले के हाथ, जब मैंने आपका नाम लिया तो इसने तीन एतराज बयान किए। पूछा, क्या? कहा, आप लंगर का खाना खाते हैं, और दूसरा, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, और तीसरा, आपको कोई रोग नहीं है। कहा, इन सवालों का जवाब कल दूंगा, मैंने अपनी जिंदगी कोई औकात मुकरर किए हैं, कुछ वक्त लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने में अपने तस्बीखाने, आस्ताने, खानकाह में देता हूं, और कुछ वक्त घर को, कुछ वक्त रोजी को मैं लकड़ियां काट के लाता हूं, मैं लकड़ियां काट के लाता हूं, और वो लकड़ियां जो है फिर बेचता हूं। तो आप ऐसा कर लो, फला वक्त में शहर के दरवाजे पे आ जाना, जब मैं आऊं तो मेरे पीछे चलते आना, बोलना नहीं है। अब ये लकड़ियां काट के फला वक्त में आए, जब आए तो लोग कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह के दोस्त हैं, लकड़ियां काट के लकड़हारे हैं, खुद अपनी रोजी रोटी करते हैं, लोगों की जेबों पे इनकी नजर नहीं। किसी ने कहा, क्या ये ढोंग रचाया हुआ है? लोगों को कहते हैं मैं लकड़ियां काटता हूं। इतना बड़ा लंगर इन छोटे लकड़हारे से हो सकता है? ये धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, लोगों को ये लकड़ियां काटना दिखाते हैं। किसी ने धूल, किसी ने फूल, किसी ने एतराज, किसी ने तारीफ, मुख्तलिफ लोगों के तबसरे। सुनते सुनते जब वो लौड़ी पहुंची तो कहने लगी, हजरत एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। मैंने आज तक आपकी तारीफें ही सुनी थी, आज पे एतराज नहीं सुना था। दो सवालों का जवाब फरमाया, दो सवालों का जवाब मेरे और अल्लाह के दरमियान था। वो ये है कि मैं जितना भी लकड़ियां काट के लाता हूं, बेचता हूं, मैंने अल्लाह से बरकत मांगी हुई है। क्या मांगी है बोले तो सही, मुझ तक तो आवाज नहीं आई। मैंने अल्लाह से बरकत मांगी हुई है, या अल्लाह इस थोड़ी में तो अपने गैब के खजाने से बरकत अता फरमा। तो कहा, अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी है, मैं भी खाता हूं, लंगर को खिला समझ के छोड़ दिया, और जब ये कीड़ा मुझे काटता है तो इतनी तकलीफ होती है जितनी तलवार का वार होता है, और अगर ये नीचे गिर जाता है फिर उसको उठा के यहां रखता हूं और कहता हूं अल्लाह ने तेरा रिस्क यहां रखा है, ये नासूर है, ये रोग है, खामोशी से संभाले फिर रहा हूं। कहा, यह तीन सवालों का जवाब है, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान था, मेरे और अल्लाह के दरमियान था। जिंदगी में सफर तय करना है रूहानियत का, हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से सौ बार, हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से सौ बार, और दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। कभी कोई कांटे तेरे दामन में अटकेंगे, कभी फूल होंगे, फूलों को भी छोड़ कांटों को भी छोड़, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। सफर तय करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, ये जिंदगी का सफर तय करना है। اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم ان مبارك كلمات کو اپنی دل کا حصہ، अपनी जान का हिस्सा, अपने जज्बों का हिस्सा, अपने मन का हिस्सा बनाते हुए जिंदगी का सफर तय करना है। तय हो ही जाएगा। आज मैं बैठा था, कुछ मुखलिस मुझे बता रहे थे, फला फौत हो गया, चेहरा सामने आया, फला फौत हो गया, मैंने कहा याद नहीं, फला फौत हो गया, फला फौत हो गया। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, हम न होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। पर याद रखिएगा, ये तस्बीह खाने की मोहब्बतें, ये तस्बीह खाने का फैज, ये तस्बीह खाने की खैरें, ये जो मोती चुन चुन के जा रहे हैं, ये मोती चुन चुन के जा रहे हैं, और अब तक अबकरी तस्बीह खाने के बहुत मोती चुने हैं। हर मोती आबदार है, हर मोती चमकदार है, हर मोती कब्रों को रोशन, दिल को रोशन, जिंदगी को रोशन, मन को रोशन, सेहत को रोशन, और जिंदगी के एक एक अंग को रोशन कर देने वाला है। ये वो नेमत है, ये वो सआदत है जो अबकरी से आप पा चुके हैं और हमेशा पा रहे हैं। बस कदरदानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कदरदान हैं, कदरदानी चाहिए। रूह की दुनिया से, रूहानियत की दुनिया से, अमल की दुनिया से, अमलियात और तावीजात की दुनिया से ऐसे दूर हुए, और यह हमने किसी औरों के हवाले कर दिए, ऐसे दूर हुए कि बड़ों की किताबों में उसके हवाले मुस्तनद सबूत मौजूद हैं, और हम कहते हैं पता नहीं ये कहां से आया। अपनी नावाकफियत की बुनियाद पे आप एक बात कह रहा हूं, नावाकफियत की बुनियाद पे हम कितनी बड़ी हस्तियों पे इतराज कर बैठते हैं और उसका कितना घाटा होता है और उसका कितना नुकसान होता है। कितनी बड़ी हस्तियों पे नावाकफियत की बुनियाद पे एतराज कर बैठते हैं। यहां आए हैं, यहां के एक एक कदम में आप थोड़े दिनों के बाद मानुष हो जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद नहीं, थोड़े लम्हों के बाद। क्या ख्याल है, सुबह आए थे, कल आए थे, मानुष हो गए? इंसान भी अजनबियत का शिकार होता है। पहले कोई चीज आए तो अजनबी अजनबी सी लगती है, फिर जाते हैं तो आंसू बहाते जाते हैं, दिल ऐसा लगता है कि आंसू बहाते जाते हैं, फिर बंदे मानुष हो जाते हैं। आप मानुष हो गए हैं, आपका दिल यहां लगा है, या मोहब्बत के लम्हे हैं, या मोहब्बत की घड़ियां हैं, या मोहब्बत के बोल हैं, यहां मोहब्बत के लुकमे हैं, या मोहब्बत के खोंट हैं। और ये जो आपने नक्श का अमल किया, तावीजात का चिल्ला गाहू में किया नहीं किया, अल्लाह नासिरी, अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा हर वक्त मदद कर रहा। जिन्नात ने हमला किया, मेरे आदम ने मदद की, जिसका अल्लाह मददगार है, जिन्नात हारेंगे, अल्लाह हारेगा। जादू ने हमला किया, नक्श अल्लाह के कलाम है, अरूफ मुकत्तात के नक्श हैं, और मैं नक्श फेर के कहता हूं अल्लाह नासिरी, जादू हारेगा, अल्लाह हारेगा। जिन्नात, नजरे बद, हसदों का हसद, लाइलाज बीमारियां, मेरे ऊपर सख्त बंदिशें लगी हुई हैं, वो बंदिशें हारेंगी, अल्लाह का नाम जीतेगा, अल्लाह के नाम में सदा इज्जत, अल्लाह के नाम में सदा ताकत, अल्लाह के नाम में सदा तासीर, अल्लाह के नाम में सदा कमाल है। सारी जीते अल्लाह के लिए, सारा नाज अल्लाह के लिए, सारा नियाज बंदे के लिए। अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतों से सारा काम होगा और हो गया। ये तो आपने बहुत ताकतवर अमल किया है। दिन में चंद बार करें, लेकिन रोजाना जब तक हजमेरी महल में है, और ये सारा साल होता रहेगा इंशाल्लाह, रोजाना हजमेरी महल में है, इस अमल को करना ना छोड़िएगा। इस अमल में बड़ी ताकत है। ये नक्श, तीन नक्श, तीन रंग के अपने बदन पे फेरे, चेहरे पे और यानी पेशानी पे और सीने पे फेरे, और फेरने के बाद तीन बार क्या पढ़ा, अल्लाह नासिरे, अल्लाह नासिरे। पता नहीं क्यों आज आपसे बातें करने को दिल कर रहा है, मुझे रोज उसके गम में यही सारी रात करना, कहीं चुपके चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना। और बातें करने को दिल उस वक्त करता है जब मजमे की सच्ची तलब हो, जब मजमे की सच्ची तलब हो, जब मजमे की सच्ची तलब हो। आपकी लगता है सच्ची तलब है और सच्ची तड़प है और सच्चा जज्बा है। अब दुआ करें, अल्लाह मुझे भी दे दे, अल्लाह मेरी नस्लों को भी दे दे। जब इस जिस्म से सांसें निकल रही हो तो फरिश्ते भी कह रहे हो या अल्लाह ये मुखलिस था, क्योंकि मुखलिस होने का फैसला उसी वक्त होगा कि ये अंदर से झूठा था या सच्चा था, खोटा था या खरा था, ये तारिक एक नंबर था या दो नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था, ये मौत 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 बताएगी। इससे पहले मुझ जैसा बंदा फैसला कैसे कर सकता है? मैं आपको कैसे कह सकता हूं मेरी हर बात में खलूस है, कैसे कह सकता हूं? पर जो राहें आप चुन चुके हैं, जो रास्ते आप चुन चुके हैं, जिन राहों का आपने इंतखाब किया है, राहें बड़ी सच्ची हैं, और राहें अल्लाह से मिलाती हैं, उसके हबीब से मिलाती हैं, मसनून दुआओं से मिलाती हैं, मसनून कलिमात से मिलाती हैं और मसनून लफ्जों से मिलाती हैं वो राहें। राहें बड़ी सच्ची, राहें बड़ी सच्ची। आज सुबह आपने सूरज को देख के अमल तो किया होगा, और या वहाबों का अमल। जिंदगी में कुछ वक्त ऐसा भी हो कि दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, बस मैं और अल्लाह हूं, मैं और अल्लाह हूं, हर चीज को छोड़ मैं और अल्लाह हूं। ये आज का दिन, जुमे का दिन बड़ा सआदतमंद गुजरा, और आप और अल्लाह की नेमतें, रात नफिल भी पढ़े होंगे और चार सजदे और चार नेमतें, चार सआदतें, वो नफिल भी आपने पढ़े होंगे। आज सारा दिन दुरूद पाक तो पढ़ा होगा, कौन सा दुरूद जरा सुनाए। اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم پڑھنا کتنا پڑھا जितना पढ़ा उतना बताइएगा हैं? 8,000 और किसने 6,000 और 5,000 4,000 की आवाज आई है 4,500 और 6,500 10,000 9,000 3,000 आप सोचें, आपकी अगर सारी आज की रोजी रोटी मजदूरी 3,000-1,500 जमा करें तो ये तो काम लाखों से आगे निकल रहा है। और सिर्फ आप नहीं, मस्तूरात हैं और पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है, पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है। एहसान दानिश कहने लगा कि दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने बाबा जी बैठे होते थे, वो पांव से माजूर थे, पोलियो की वजह से पैदाइशी माजूर थे। एक बाबा जी बैठे होते थे, बाबा जी, तो वो बच्चे उनके साथ थे, तो बच्चों को वो सिखाते थे जेब तराशी, जेब काटते थे। तो शाम को सब बच्चे जमा होते थे और उनके सामने जो आज का पैसा होता था रखते थे, और वो कहते, देखो हलाल खाना है, ईमानदारी से खाना है, जो भी लाए हो सामने रख दो, उसमें से एक पैसा नहीं खाना। फिर वो बच्चों में बांट देते थे, सब में, खुद नहीं रखते थे, बड़े ईमान वाले थे। हफ्ते के बाद माजूर थे, किसी बच्चे के कंधे पे बैठ के खुद किसी की जेब तराश के लाते थे, खुद खाते थे, किसी का हक नहीं खाते थे। हफ्ते के बाद माजूर थे, किसी बच्चे के कंधे पे वो लाद के ले जाते थे, वो दूसरों की जेब से खुद लाते थे, किसी का हक नहीं खाते थे, वो कहते थे हक किसी का ना खाओ। एक एक दफा ना एक बच्चे ने 2 रुपए दिए, उसने कहा वो जालिम आदमी झूठ बोलता है, हराम खाता है, इतने 2 रुपए दिए। उसने कहा उस्ताद जी, फिर मारते थे उस्ताद जी, बहुत मारते थे। उन्हें उस्ताद जी अल्लाह के वास्ते, वाकया ये हुआ, मैंने आज एक अंग्रेज की जेब से पैसे निकाले, पैसे बहुत ज्यादा थे, ख्याल आया क्यामत के दिन हजरत ईसा अलैहि सलाम कहेंगे कि मेरे उम्मती की जेब से आपके उम्मती ने पैसे निकाले, कहीं मेरे हुजूर को शर्मिंदगी ना हो, इसलिए मैंने फिर उसकी जेब में पैसे वापस डाले, मेरा फन है। फिर एक मुसलमान की जेब से पैसे निकाले तो ये 2 रुपए ही थे। वो नगवा जिंदाबाद, यही ईमानदारी है। खुद माजूर आदमी थे और वो खुद किसी के मार के नहीं खाते थे, जो होता था बच्चों में फिर आपस में तकसीम कर देते थे। रोज पूछते थे तू कितना लाया, तू कितना, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज की हमने कितनी कमाई की, आप कहते हैं इतनी कमाई, वो कहता है इतनी कमाई, वो कहता, तो फिर वो उनमें तकसीम कर देते थे। बाबा जी खुद बहुत ईमान वाले थे, वो किसी का हक नहीं खाते थे। किसी का हक नहीं खाते थे, बड़े अल्लाह वाले थे। हमारे हमारे एक बुजुर्ग थे हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे हम एक दफा दिल्ली गए नए जूते सिलवाए, मेरे साथ उन्होंने ये वाक्य सुनाया, कहने लगे नए जूते सिलवाए, बेहतरीन नए कपड़े बनाए, और हम कुछ दोस्त दिल्ली फिरने गए। तो ट्रेन जाती थी तो कहने लगे कि एक बंदा आया, कहने लगे भाई कहाँ से आए हो, कहने लगे अपना, हाँ तुम लोग बहुत अच्छे हो, देखो ख्याल करना यहाँ जो है बहुत ज्यादा ठग मिलेंगे। वो बड़ा भले भले मानस आदमी था, कहने लगा देखो ख्याल करना ठग मिलेंगे और तुम्हारी चीजों को तुम्हें लूटेंगे, लूटने के तरीके ऐसे बचना, ये लूटने का तरीका इससे बचना, ये लूटने का तरीका इससे बचना। तो कहने लगे कि उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, तुम्हें एक और तरीका बताता हूं। मेरा कहा रुमाल नया था, रुमाल बिछा दिया, जूते उतारो सारे, तुम्हें एक तरीका बताता हूं। कहा जूते सारे इसमें रखो, ये भी एक तरीका है, पता है वो क्या करेगा, इस रुमाल में सारे जूते बांध के ऐसे दौड़ पड़ेगा, और दौड़ गया। मैं समझ रहे, नहीं वो तो सिर्फ बता रहा था ना, ऐसे रुमाल में ना जूते इकट्ठे करेगा, जूते इकट्ठे करके ऐसे बांधेगा, और ऐसे बांधने के बाद जो है कहने लगे वो तोड़ पड़ेगा। उनको डाडा हलवा कहते थे, ये उन्होंने मुझे खुद सुनाया। हम दिल्ली फिरने गए और क्या जूते सारे रखवाओ, अब हमारे पास ना जूते और सारी कहानी फारे, और हम दिल्ली फिरने गए। तो आज की हमारी आमदनी लगता है कोई अच्छी है, हैं? ऐसे ही कुछ ना कुछ है ऐसे। हमारे यहां एक साहब थे, मैं किसी सफर में था तो उनका एक बाजू नहीं था, कटा हुआ था, वो माजूर थे, मसनूई बाजू था, वो बाएं हाथ से खाते थे। तो जब कोई अच्छा खाना होता था, तर बतर बेहतरीन खाना होता था, तो वो बंगाली जबान बोलते थे, उर्दू सही नहीं बोल सकते थे, तो वो एक लफ्ज कहते थे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं कहते, कहते जिंदाबाद। तो आज मैं भी जिंदाबाद कि माशाल्लाह आपने दरूद पढ़ा, आज जिक्र किया, आज तस्वीर पढ़ी, मैं भी कह रहा हूं जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इंशाल्लाह आज की रात और मेहनत करनी है, आज अभी हमारे रूहानी पैकेज शुरू होने वाले हैं, जो आज की रात और मेहनत करनी है, और आज की रात और तवज्जो करनी है, करेंगे ना। हमारा सबसे पहला रूहानी पैकेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कागज आपके सामने होगा, जो आपको मिला है हदिया, ये सबसे पहला है ये कागज। ये आपने आज क्या बिस्मिल्लाह के कमालात, आप सोच नहीं सकते, क्या बरकात जो सुनी है आप गुमान नहीं कर सकते। हम इस पे उंगली से लिखेंगे। आप पुर करके लाए हैं सामने रख कर दें, आप नहीं लिखा वो भी सामने रख लें, आपका पिछला है तो उसको भी सामने रख दें, वरना यही है, इसको उंगली से लिखेंगे हम, और फिर इसको मुस्तकिल आप लिखेंगे। एक सिर्फ दरखास्त है, इसकी फोटो कॉपी ना कराएं, ये सिर्फ खुद ही लिखना है। आप एक से ज्यादा लिख लें, आप घर के हर फर्द के लिख लें, आप किसी को हदिया तोहफा देने के लिए लिख दें, और कमाल चीज है। इसको हम उंगली से लिखेंगे और उंगली से इसके सारी कायनात, इसके सारे कमालात, इसकी सारी बरकात का तसव्वुर करते हुए, इसकी सारी तासीर का तसव्वुर करते हुए इसको उंगली से लिखेंगे। लिखें इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनको लिखना नहीं आता वो उंगली फेरते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और हमने 11 बार लिखना है इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 आमीन। अब इस नक्श को दोनों हाथों में उठाएं, जैसे दुआ मांगते हैं ना, और दुआ की तरह हाथ हो और ये नक्श दो आपके दोनों हाथों के अंदर हो, आपके दोनों हाथों के अंदर हो, और इसको दुआ की शक्ल में अल्लाह के सामने रखें और 11 बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इस नक्श को देखते हुए तवज्जो से 11 बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। आप चाहे एक नक्श लिखें, जो लिखें, ज्यादा लिखें, आज से आपने इस नक्श के लिखने की इब्तिदा कर ली, बरकतें ले ली। आप इसके अलावा और कागजों पे भी लिख सकते हैं, और हमारे पूरी दुनिया के मुखलिसीन इसको, इसका प्रिंट मौजूद है, वहां से निकाल लें और उसमें से इंशाअल्लाह ताला ये ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसका वहां से प्रिंट ले लें, पूरी दुनिया के लोग इसको लेमिनेशन करें, खुशबू लगाएं, घर में लटकाएं। इसका तावीज ज्यादा लिखें, किसी बर्तन बोतल में डाल दें, उस पानी से घर में पिएं, उस पानी से आटा गूंधें, उस पानी को घर में हंडिया खाने में, पीने में, घर के पिलाने में इस नक्श का पानी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नस्लों में बरकत, घर में बरकत, सेहत, रहमत और खैरें और आफियतें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ रहमतें जुड़ी हुई हैं इंशाअल्लाह ताला। अब हमारा अगला अमल है, पेंसिल आपके पास होगी, पेंसिल आपके पास होगी, ये पेंसिल, ये थोड़ी सी इस पे जरा मेरी बात पे तवज्जो करें। ये अमल आपने अपने मकाम पर जाकर करना है। इसका तरीका थोड़ा सा मुझसे सुन लें। पिछले साल भी मैंने ये अमल कराया था, फिर लोगों का मुतालबा हुआ, लोगों का तकाजा हुआ, लोगों का इसरार हुआ कि जिस जिसने ये अमल किया था उसके घर की बलाएं, आफतें, मुसीबतें कैसे टूटी। तो इसका जरा तरीका थोड़ा सा सुन लीजिए। घर के जितने भी अफराद हैं उनके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, कपड़ा पुराना हो, इस्तेमाल किया हुआ हो, कोई ज्यादा कारामत ना हो, धो लें धुला हुआ लेकिन पुराना, और अगर जिस्म के अंदर का कपड़ा हो बुनियान शमीज वगैरह तो ज्यादा बेहतर है। इन सारे कपड़ों को जमा करके इसकी एक गेंद की शक्ल बनाकर इसको सी लें। ये पेंसिल दमशुदा है अल्लाह के नाम और ताकत और तासीर से, जैसे असाए मूसा जहां मारते थे सब जादू असरात बंदिशें टूटते थी और अल्लाह की मदद आती थी। अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें और पेंसिल पर सख्त जरबे लगाते हुए ये आयत 40 बार पढ़ें, वकुल जाल हक वजहक अलबातिल इन्नल बातिल काना जहूका। यकीन जानिए वो आयत है, बातिल टूट जाता है, वो जादू का बातिल है, वो जिन्नात का बातिल है, वो नदरे बद का बातिल है, वो किसी हसद दुश्मन का है, वो किसी की सख्त लगाई हुई बंदिश है, ये बातिल टूट जाता है। ये तस्वर करें कि जितने भी कपड़े हैं, गौर से सुनिएगा, और जिन जिन के जिस्मों के कपड़े हैं, जब जिस तन को ढांका था उस तन के रुए रुए, बाल बाल, रेशे रेशे, रग रग, खून के कतरे कतरे, और हड्डी के हड्डियों में से जो बीमारियां हैं, हसद है, नजरे बद है, कीना है, जादू है, नफरतें हैं, मसाइल हैं, और किसी किस्म के असरात हैं, और वो नाकामियां परेशानियों की शक्ल में हैं, वो उलझनों की शक्ल में हैं, ये जितनी भी इसको इस पेंसिल की जरबे उन कपड़ों को मारेंगे, उतने उन कपड़ों के पहनने वालों के रग रग से बीमारियां निकलेंगी, रग रग से तकलीफें निकलेंगी, खून के कतरे कतरे से जादू असरात बंदिशें टूटेंगे और निकलेंगे। मैं अपने इस अमलशुदा पेंसिल की चोटों और जरबों से इन सारी चीजों के ऊपर चोटें मार रहा हूं, और मेरी चोटें उन्हें लग रही हैं, किनको? तमाम जादू, तमाम जिन्नात, तमाम बंदिशें, तमाम बीमारियां, तमाम सिफली चीजें को लग रही हैं। इस तस्वर के साथ मारना है और इस तस्वर के साथ ये आयत पढ़नी है। और मेरा अल्लाह कहता है इन्नल बातिल काना जहूका, कि हमने बातिल को खत्म कर दिया और बातिल को तोड़ दिया, और इस कपड़े की गेंद पर ये पेंसिल जोर से इस सख्त तस्वर से मारनी है कि इस कपड़े के पहनने वाले के तन तन, मन मन, रुए रुए, पल पल से सब रोग, सब बीमारियां, सब तकलीफें, सब जादू, सब असरात निकल गए और टूट गए। अगर मजबूरन आयत ना आती हो जिनको, तो वो ये कहें हक आया बातिल गया, हक आया बातिल गया, हक आया बातिल गया, वो ये अमल करें, वो ये अमल करें। फिर इसका तरीका, इसके साथ कागज मौजूद है, तारुफी कागज मौजूद है ना, उसमें तरीका लिखा है कि कुल 40 जरबे लगानी है, 40 दिन के बाद इस गेंद और अमल शुदा पेंसिल को संभाल के रखना है, अगले 40 दिन छोड़कर फिर 40 दिन, फिर अगले 70 दिन छोड़कर फिर 70 दिन के बाद 11 दिन, फिर 90 दिन छोड़कर 90 दिन के बाद 5 दिन, फिर 123 दिन छोड़कर सिर्फ 3 दिन। इस अमल को मुकम्मल होने के बाद ये पेंसिल और कपड़ा किसी मिट्टी, पाक मिट्टी में गहरे इसको दबा देना है, दफन कर देना है। आप समझ गए, ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं देखने में बड़ी आसान होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं देखने में बड़ी आसान है। मैं सहरा में गया तो उसके मुंह में लुकमा दे रहे थे, उसके दोनों बाजू कटे हुए थे, कटे हुए थे। तो मैंने पूछा इसके बाजू क्यों कटे हुए हैं, कहा कि बच्चे थे डब्बियां खेल रहे थे, इनको रेत में से एक डब्बी मिली, वो डब्बी फट गई, वो असल में बारूदी सुरंग थी जो 70 की 71 की जंग में हुई थी, वो वहीं पड़ी रही, वो बारूदी सुरंग थी, फट गई, इसके दोनों बाजू उड़ गए। कुछ चीजें डब्बियां होती हैं, कुछ चीजें मामूली चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी आम सी नजर आती हैं, पर याद रखिएगा वो आम नहीं होती। आप जैसे कदरदानों के लिए उनकी बड़ी कदर है, आप जैसे कदरदानों के लिए उनमें बड़ी ताकत है, आप जैसे कदरदानों में के लिए उनमें बड़ी तासीर है। और ये अमल जो हो रहे हैं, हर अमल में ताकत भी है और हर अमल में तासीर भी है। आप ऐसा करें, ये पेंसिल को दाएं हाथ में मजबूत पकड़ें और मैं इस पे अमल करता हूं और इस पे दम करता हूं। आप अपनी मुश्किलें, परेशानियां, हालात की सख्तियां, तंगियां, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, उनका तसव्वुर करना है, क्योंकि इस अमल को जाके आपने घर में इस पेंसिल को अमल में लाना है। तो इसको अमल को, इस पेंसिल को हाथ में पकड़ें और सर झुकाएं और अपने तमाम मसाइल का तसव्वुर करें कि वो तमाम मसाइल, मुश्किलें खत्म हो रहे हैं। اللهم صل على انشاءاللہ یہ عمل ہو گیا۔ اس کا ہدیہ مختلف ہے، اس کا ہدیہ ہے 1.25 کلو باجرہ لیں، اس کی 9 مٹھیاں بنائیں، ہر مٹھی کو اپنی پیشانی پر ملیں، نیچے کوئی کپڑا بچھا ہوا ہو، باجرہ ضائع نہ ہو۔ اب یہ باجرہ پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ 1.25 کلو باجرہ گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، پورے گھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے اور پورے گھر کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ہدیہ لازم دینا ہے اپنے مقام پر، 1.25 کلو باجرے کا ہدیہ لازم دینا ہے اپنے مقام پر، اور اس کی بہت طاقت ہے اور اس کی بہت تاثیر ہے اور اس کا بہت کمال ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل آپ کو بہت حیرت انگیز برکتوں کے ساتھ ملا ہے، بہت رحمتوں کے ساتھ ملا ہے۔ ایک ایک چھوٹا چھوٹا عمل ایک تاثیر رکھتا ہے، چھوٹا چھوٹا عمل ایک طاقت رکھتا ہے۔ اس کو چھوٹی پینسل نہ سمجھیے گا، ہمارے یہاں ایک صاحب آئے، وہ لوگوں کو کہتے تھے کوئی بات، ایک صاحب ان کی مخالفت کرتے تھے، تھا پٹھان، تو گاؤں میں عمومی رواج بیت الخلاء کا نہیں تھا، تو وہ صبح صبح حاجت کے لیے گیا، پٹھان بھی گیا۔ تو پٹھان نے اس کو کہا کہ یارا تم ہماری بات کو نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا یار تم ہم جو بات کرتے نا صحیح کرتے، تم ہم بات کو نہیں سمجھتا۔ یا کریم، وہ بھائی اس کے آگے یہ پھٹا پتہ نہیں کیسے لگا ہوا تھا، یہ پھٹا اس لیے تو لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا تم جھوٹے ہو۔ اس نے ذرا سخت الفاظ اور کہہ دیے۔ مرغی جا رہی تھی، پٹھان نے ایک پینسل نکالی، پین نکالا، اور پین کوئی ریوالور تھا۔ مرغی جا رہی تھی، اس کو جو ماری گولی، وہ مرغی پھڑک گئی۔ کہنے لگا یار تم ہم اب یہ تمہیں مارے گا۔ تو پہلے اس کو نشانی دکھائی کہ یہ پینسل نہیں ہے، یہ پین نہیں ہے، اس کے اندر گولی بھی ہے۔ اب وہ کہے اللہ کے واسطے نہ مار۔ انہیں کہ نہیں یار ہم تم گولی مارے گا، ہمارا باپ دادا بھی گولی مارتا تھا، یار ہم نماز بھی پڑھے گا تمہیں گولی بھی مارے گا۔ اب وہ بیچارہ منتیں کرے، زاریاں کہ نہیں تم جو کہو گے میں لوگوں کو کہوں گا، خان صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ کہ ٹھیک ہے پھر ہم اپنا پین یہاں رکھتے ہیں، تم گھر گھر جاؤ اور سب کو کہو پٹھان کا بات ٹھیک ہے، کہو گے؟ انہیں کہوں، پیشاب تو وہیں خشک ہو گیا بیچارے کا۔ اور پھر پٹھان بڑا ایماندار تھا،
कहने लगे ये पैसे लो उन लोगों को दो जिनकी मुर्गी मैंने मारी है। था ईमानदार, जिनकी मुर्गी मैंने मारी है ये पैसे उनको जाके दो। हम समझते हैं कि शायद इन चीजों में कुछ नहीं है, उसकी एक वजह है हमारी चेहरे की आंखें हैं, हमारे दिल की आंखें नहीं है। आप में से होंगी, बेशुमार लोगों की होंगी, तो ये हमारे दिल में इसकी अस्मत हो, वकार हो, कदर हो, अदब हो। क्या लफ्ज कहा? अजमत हो, वकार हो, अदब हो, कदर हो। और जिसको मिला है, अजमत वाले को मिला है, कदर वाले को मिला है, वकार वाले को मिला है और अदब वाले को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सच्चे लोग हैं और सच्चे अदब से, सच्ची तलब से यहां बैठे हैं। और मेरा अल्लाह सच पूछे, आपको झोलियां भरा के उठाएगा, अल्लाह खाली नहीं उठाएगा। अब हमारा अगला पैकेज मोती का पैकेज है। आपके पास मोती होगा, मोती आपके पास, इसको अपने मकाम पे जाके करना है और यह अमल हर हालत में किया जा सकता है। एक शीशे के गिलास में पानी भर लें, बारिश का पानी हो अच्छी बात है, जमजम का पानी हो, वरना जो पानी मुयस्सर हो उस पर यह दमशुदा मोती डालेंगे। गिलास को नीचे से पकड़ेंगे, ऊपर से ना पकड़े, ताकि उंगलियों का अक्स उसमें नजर ना आए। पेंदे से पकड़ें, उंगलियों पे गिलास को उठाएं, शीशे का गिलास हो, पानी डालें, फिर यह मोती डाल दें। इस गिलास को मुसलसल देखना है। मैंने एक दफा इससे मिलता जुलता अमल एक चैनल में बताया था, एक चैनल में, एक टीवी चैनल था, तो मेरे साथ बैठे थे ऐसे अचानक आए। मैंने कहा गिलास ले आए, और ये मैंने अमल बताया था, जो दुनिया ने इससे फायदा पाया, जो मखलूक ने इससे फैज पाया, जो दुनिया ने इससे फायदा पाया, जो मखलूक ने इससे फैज पाया। शीशे का गिलास को पानी डालें, मोती डालें गोती को, और गिलास को मुसलसल देखते हुए आपने पढ़ना है, या समीओ या बसीरो, या समीओ, या अल्लाह के दो नाम है, इसमें बड़ी ताकत है। और गिलास के अंदर आपने देखना है, आपको गिलास के अंदर नजरे बद, हासिदीन, जादू, चीजें, नक्शे, पूरी दुनिया नजर आएगी। जितना यकीन से पढ़ेंगे उतना फायदा होगा, और गिलास के अंदर सारी दुनिया और सारा मंजर वाज़ेह होगा। बास को जल्दी, बास को देर में, जितना यकीन और पढ़ने की ताकत और जितना अल्लाह पे एतमाद होगा उतना ज्यादा इसका नफा और इसका कमाल मिलता है। मोती अंदर होगा, गिलास में पानी को तवज्जो से देखेंगे और या समीओ या बसीरो पढ़ेंगे, आपको वो दुनिया मिलेगी, वो शबीए, वो शक्लें, वो चीजें, कायनात जो सोच नहीं सकते, जो दिल में था कि मैं देखूं वो सही, हर चीज मिलेगी। या समीओ, सारी कायनात के सुनने वाले, सारी कायनात के सुनने वाले, दुख सुनने वाले, गम सुनने वाले, अल्लाह तू जानता है मेरे दुख क्या हैं, मेरे गम क्या हैं, मेरे रोग क्या हैं, मेरी। और या बसीरो, अल्लाह तू मेरे सारे के सारे गम, मेरे दुख तू जान, देख भी रहा मैं किस हाल में हूं और मेरे मसाइल क्या हैं, मेरी मुश्किलात अल्लाह को दिखा रहे हैं। बस अब ये अमल कर चुके, इस मोती को इलाहदा रख लें, उस पानी को चुस्की चुस्की घर का हर फर्द पिए, कमाल है। और इस मोती को पर्स में रखें, सिरहाने रखें, थैली में रखें, कहीं भी रखें जिंदगी में। और ये अमल हफ्ते में एक बार, दो बार, कम अज कम हफ्ते में एक बार कर लिया करें, ताकि तसलसल और इसकी बरकत ना टूटे। ठीक है ना, इसका तरीका लिखा हुआ है, बहुत अनोखा एक अमल है और मोती है, और मोती है। अब इस मोती को दाएं हाथ की हथेली में पकड़ें और दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करें। अब इस मोती को میں عمل کرتا ہوں اور آپ دل کی گہرائیوں سے بیٹھ کے یا سمیعو یا بصیرو پڑھیں، توجہ سے بیٹھ کے۔ میں اس پہ دم کر رہا ہوں، آپ توجہ سے بیٹھ کے اس پہ پڑھیں، یا سمیعو یا بصیرو۔ اللہ مبارک کرے آپ کا عمل، بہت زیادہ عمل آپ کا، بہت بابرکت عمل ہے، بہت سعادت مند عمل ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالی اگلا عمل ہمارا روشن راتوں کا عمل ہے، روشن راتوں کا عمل۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں۔ صرف دو لفظ ہیں، والتین والزیتون۔ بس ایک بات بتاؤں، اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ میری بات کو پھر غور سے سنیے گا۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی ہے۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء، جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے۔ دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا، یا وصیتیں کرتا تھا، یا جاتے ہوئے کہتا تھا، بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی، انشاءاللہ۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ، اتنا طاقتور یہ عمل ہے۔ اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ عمل کرنا چاہتے ہیں یا اتنے زیادہ عمل کرنے سے تھک گئے ہیں؟ اکتا تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے، تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ وہ طاقتور عمل ہے۔ میرا حال تو یہ ہے، زبردستی وہ کہتا ہے بس بس میری جھولی پڑ جائے گی کہ چلو کوئی اور بھی لے جاؤ، اور بھی لے جاؤ۔ لیکن میں آپ کو زبردستی نہیں دے رہا، الحمدللہ آپ میں اپنا سچا جذبہ ہے۔ میں جتنی دیر سے بیٹھا ہوں میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ہر بندہ متوجہ ہے، ہر بندے کی آنکھوں میں، جذبوں میں شوق ہے، ذوق ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، شوق ہے، ذوق ہے، طلب ہے، تڑپ ہے۔ خود کہیں، شوق ہے، ذوق ہے، طلب ہے، تڑپ ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں ہر بندے کے جذبہ، ہر بندے کا جذبہ سچا ہے۔ اللہ مجھے بھی ایسے بنا دے۔ ہاں اللہ مجھے بھی ایسے بنا دے۔ اب ہم عمل کریں گے، آپ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا۔ جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ آپ نے، میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں۔ ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں۔ اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دے، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شہادت کی، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ چوتھی انگلی کھول دیں، والتین والزیتون، پانچویں انگلی کھول دے، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ چھٹی انگلی کھول دے، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، ساتویں انگلی کھول دے، پڑھیں، والتین والزیتون، آٹھویں انگلی کھول دے، پھر پڑھیں، نویں انگلی کھول دیں، پھر پڑھیں، دسویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، اوپر لے جا کر सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर सर झुकाकर पढ़ें वत्तीन वज़ैतून वत्तीन गिड़गिड़ा के पढ़ें वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून विजदान से पढ़ें वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वज़ैतून वत्तीन 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 अपनी गोद में हाथ रख के फिर पढ़ें वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून और अब गोद में हाथ रख के पढ़ते हुए तसव्वुर हो कि मेरा प्याला भर गया मेरा कशकोल भर गया मेरी झोली भर गई वत्तीन वज़ैतून इस तसव्वुर से पढ़ें वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून वत्तीन वज़ैतून अब इन हथेलियों में दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी अब इसको पूरे बदन पे फेरें अपनी नस्लों का तसव्वुर करें अपने घर वालों का तसव्वुर करें सारी उम्मत का तसव्वुर करें पूरे बदन पर इसको फेरें अल्लाहु अकबर क्या मुबारक है आपको क्या सआदत है आपको क्या बरकत है आपको आपने वो अमल किया दरवेश करवाते थे साल में एक दफा मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे और जाते हुए इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहत करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो ख्याल करना तुम परेशान न होना हमने वत्तीन वज़ैतून का अमल किया है अल्लाह गैब से खिलाएगा पिलाएगा रिस्क वुस्सत औलाद नेमते इंशाल्लाह अता फरमाएगा है ना लंगर की रोटी का टुकड़ा आपके पास होगा इस टुकड़े को खुश कर लीजिएगा घर जाके खुश कर लीजिएगा दिल की गहराइयों से अंदर के दर्द से टुकड़े को देखते हुए अवल आखिर दरूद पाक 3 बार पढ़ेंगे दरूद शिफा और फिर हम मुसलसल इस टुकड़े को देखते हुए बिस्मिल्लाह व आला बरकतिल्लाह पढ़ना है ठीक और घर जाके इसको खुश करके इसके छोटे छोटे टुकड़े करके कोई टुकड़ा दाल में कोई चावल में कोई राशन में कोई आटे में कोई चीनी में कोई कहां ये छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे रूह में बरकत जिस्म में बरकत मन में बरकत तन में बरकत रूह की हिफाजत जिस्म की हिफाजत मन की हिफाजत तन की हिफाजत रिस्क में वुस्सत और नस्लों के लिए खैर ये तोहफा है जो आप यहां से लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस घर में कभी कमी नहीं ना रिस्क की ना दौलत की ना सेहत की ना बरकत की ना अताओं की ना शिफाओं की आप भी चाहते हैं तो फिर पढ़ें अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اب اس کو اپنی انگلی میں اپنی ہتھیلی میں سامنے رکھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے سارے پڑھیں بسم اللہ وعلى برکت اللہ بسم اللہ وعلى برکت اللہ بسم اللہ وعلی 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 برکت اللہ وعلی برکت اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک قبول کرے، یہ اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لوٹ رہے ہیں۔ ہاں مولا، میرے رزق میں برکت، میری صحت میں برکت، میرے راشن میں برکت، اور اللہ جس کو برکت دیتا ہے قیامت تک چھینتا نہیں، انشاءاللہ اللہ نہیں چھینے گا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ برکت دے گا۔ بہت کمال چیز ہے، اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے راشن میں، یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے رزق میں، یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے چاول میں، دال میں خشک کر لیجئے گا، یہ ہمیشہ کمیاں نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ کمیاں نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ باغ و بہار رکھے گا، ہمیشہ رازوں میں، ہمیشہ راحتوں میں، ہمیشہ رحمتوں میں، اور نسلوں کو فقر سے، فاقے سے، غربت سے، تنگ دستیوں سے، دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں اس کی برکتوں سے اللہ کھلائے گا، پلائے گا، عطا کرے گا اور راحتیں دے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس تنکے ہوں گے، تنکے آپ کے پاس ہوں گے، چھوٹی مقدار میں یا بڑی میں آپ کے پاس تنکے ہوں گے، یہ سامنے تنکے ہیں، اس میں سے تنکے چن لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی انگلیوں کے درمیان تنکے رکھ لیں، پہلے چھوٹی انگلیوں کے درمیان رکھیں، پھر اس کے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی، اس طرح 8 تنکے بنیں گے، اور انگلیاں آپس میں ملا لیں۔ اب میں جب اللہ کا نام پڑھوں گا تو ایک ایک تنکا نکال کے اپنی گود میں ڈالتے جائیں، جب میں اللہ کا نام پڑھوں گا وہ تنکا نکالتے جائیں، اپنی گود میں رکھتے جائیں۔ اور تنکا کس نیت سے نکالنا ہے، ذرا نیت غور سے سنیے گا، نیت توجہ سے سنیے گا۔ نیت، جس طرح میں تنکا ہاتھ سے نکال رہا ہوں، اس طرح میرے تن سے بیماریاں، میرے من سے بیماریاں، میرے خون کے ذرے ذرے سے تکلیفیں، میرے بال بال سے جادو جنات، اثرات، بندشیں، حاسدوں کا حسد، دشمنوں کا شر، میری رگوں میں میری گھریلو الجھنیں، میری مشکلات، جس طرح میں تنکا نکال رہا ہوں، اس طرح میرے تن، میرے گھر، میرے من، میری زندگی، میرے جذبوں سے، سب چیزوں سے، یہ تنکے جس طرح نکل رہے ہیں، اس طرح یہ چیزیں ساری کے ساری نکل رہی ہیں۔ اس تصور کے ساتھ تنکے نکالنے ہیں، تصور سمجھ گئے، اپنی انگلیوں کے درمیان میں، انگلیوں کے درمیان میں تنکے ڈال دینے ہیں، انگلیوں کے درمیان میں، اور یہ 8 تنکے ان انگلیوں کے درمیان آئیں گے، اور اس کے بعد ان کو ہم نے نکالنا ہے، اور نکالنا ہے یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہوئے۔ کیا پڑھتے ہوئے؟ یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہوئے ان تنکوں کو نکالنا ہے۔ میں نے جب کہنا ہے تنکے، اس کے بعد آپ نے ان کو پھر نکالنا ہے، اور نکالتے ہوئے تصور آپ سمجھ گئے کہ کیا تصور کرنا ہے، نکالتے ہوئے آپ تصور سمجھ گئے کہ کیا تصور کرنا ہے اور کیا ذہن میں لانا ہے۔ اب پڑھیں میرے ساتھ، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اپنی مصیبتوں، پریشانیوں کا تصور کرنا ہے، اور جس وقت تنکا نکالیں گے اسی وقت تصور کریں گے کہ وہ ساری تکلیفیں، مصیبتیں میری رگ رگ میں سے، میری تن تن میں سے، میرے من من میں سے، میرے گھر، میری نسلوں میں سے، تنکے کے ساتھ وہ ساری تکلیفیں، سب مشکلیں نکل گئیں۔ ایک تنکا نکال دیں، اسے اپنی گود میں ڈال دیں، پھر پڑھنا شروع کریں، یا اللہ یا رحمان، پھر پڑھنا شروع کر۔ دوسرا تنکا نکال دیں، پڑھنا شروع کریں، یا اللہ یا رحم. یا اللہ یا رحمان. اگلا تنکا نکال دیں پھر پڑھنا شروع کریں. اگلا تنکا نکال دیں پھر پڑھنا شروع کریں. اس تنکے کو نکال کے گھیر پڑھنا شروع کریں. یا اللہ یا رحم. اگلے تنکے کو نکال دیں. یا اللہ یا رحم. آخری تنکا نکال دیں پڑھیں. یا اللہ. آمین آمین. ان تنکوں کو جمع رکھیے گا. اپنے مقام پہ جا کے ان تنکوں کو جلانا ہے. جلا کے اس کی راکھ کسی عطر میں گھولنی ہے. کوئی عطر ہو جائے اس میں گھولنے ہیں اور یہ سیاہی بن جائے گی. کسی بھی قلم سے یا انگلی سے اس سیاہی سے کاغذ پر 11 بار لکھنا ہے جیم جیم. جس جیم سے جماعت, جیم سے جمع, جیم سے جمال, وہ جیم. صرف 11 بار لکھنا ہے کاغذ پہ. جیم سے جل جلالہ, یہ 11 بار لکھنا ہے. ان تنکوں کو جلائیں گے, اس کی راکھ میں عطر ملائیں گے, یہ سیاہی بن جائے گی. اس سے انگلی سے کاغذ پہ 11 بار جیم لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ اس کاغذ کو بند کر کے کسی باورچی خانے میں, کسی ایسی جگہ جہاں ٹھنڈک نہ ہو, اس کو وہاں رکھنا ہے. 40 دن وہاں لٹکائے رکھیں اور 40 دن کے بعد اس کاغذ کو دفن کر دیں گے. بس یوں دفن کریں گے. جادو دفن, جنات دفن, مشکلیں دفن, الجھنیں دفن, بیماریاں دفن, تکلیفیں دفن, اور دشمن کے حسد اور سب شر انشاءاللہ دفن ہو جائے گا. اور اس کا ہدیہ کوئی میٹھی چیز اپنے مقام پہ ضرور بانٹیے گا. اس کا ہدیہ میٹھی چیز اپنے مقام پہ ضرور بانٹیے گا. اب ہمارا آخری عمل سورۃ اخلاص کا نقش ہے, جس کی کل لائن ہم نے ایک لائن جو ہے پر کی تھی. سورۃ اخلاص کا نقش یہ وہ نقش ہے جس کی ایک لائن کل ہم نے پر کی تھی. آج کی شام, پھر کل کی شام, پھر اتوار کو آخری لائن انشاءاللہ. یہ وہ نقشہ ہے جس کو لٹکانے سے گھر میں رحمتیں, رزق, صحت, برکت, عافیت. اس کے فائدے میں نے کل آپ کو بتائے تھے. اس کے فائدے لکھے بھی ہوئے ہیں. یہ تھوڑے لکھے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہو. آئیں لکھیں آج کے نقش میں. ہو اللہ احد, اللہ. جو نقش خالی ہو اس کو چھوڑ دیں گے, جو لکھا ہو اس کے نیچے لکھیں. الصمد, لم یلد, ولم يولد ولم
بس آپ نے نہیں لکھا تو لکھ لیں, نقش مکمل کر لیں. صرف ایک لائن لکھنی ہے, آج ہم نے دوسری لائن لکھنی ہے, دو لائنیں باقی رہ گئی ہیں. ایک کل شام کی لائن ہے, ایک پرسوں صبح کی ہے. یہ نقش مکمل ہو جائے گا الحمدللہ, یہ نقش مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. اور یہ نقش آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے, یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے, یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا نچوڑ ہے, یہ آپ کے لیے برکتوں اور خیروں کا ذریعہ ہے. کل صبح نماز فجر کے بعد کے ہمارے جو پیکج ہیں, گلاب کی پتیاں, تلسماتی صابن, تلسماتی ٹیشو, ایک پاؤڈر کامل ہے, ایک کسی چیز پسی ہوئی عمل شدہ کپڑا ہے, اور وسعت رزق کے دانے ہیں. کل صبح انشاءاللہ برکتیں بہاریں لوٹ لیں. پھر یہ وقت کہاں, پھر یہ لمحے کہاں, پھر یہ سعادتیں کہاں. ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ جو قلم میں نے آپ کو دی ہے, جو قلم آپ کو دی ہے, اس سے بہت زیادہ لکھیں. اپنے کوئی نقش تعویذ آپ کے تجربے میں ہو, کوئی دم آپ کے تجربے میں ہو, کوئی خاص عمل طبی روحانی ٹوٹکا آپ کے تجربے میں ہو, وضاحت سے لکھیں, کاغذ اور لے لیں, اسی قلم سے لکھیں. اتوار والے دن یہ ساری تحریریں میں سامنے رکھوں گا, اور اس پہ جو عمل ہوگا انشاءاللہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس کو بہت توجہ سے لکھیں, سارا دن لکھیں, محنت کر کے لکھیں, ہمت کر کے لکھیں, جذبے سے لکھیں, واضح لکھیں, صاف صاف لکھیں, اپنے موبائل پتہ ضرور لکھیں. ٹھیک ہے, دعا سے پہلے دعائیں ہم مختصر کرا رہے ہیں, انشاءاللہ لمبی دعا ہماری اتوار کو ہوگی تفصیلی دعا. دعا سے پہلے عرض ہے کہ جو حضرات اتوار کو نکاح کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں, کچھ نکاح ہیں ان کو اجازت ہے. اتوار کے دعا سے پہلے نکاح ہوں گے تو ان کو نکاح کی اجازت ہے, جو نکاح کے عمل میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کاغذ لکھیں, بہت لکھیں, توجہ سے لکھیں, توجہ سے لکھیں. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں, بعض اوقات جوتوں سے بھی کوئی روگ لگ جاتے ہیں. موبائل چارجنگ پر لگا کے نہ چھوڑیں, کیونکہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ آئے. اپنی چیزوں کی حفاظت کریں, کوئی ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو. کیا عرض کر رہا ہوں, ہماری وجہ سے کیا نہ ہو. ہاں, اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو اعلانات ہوتے ہیں ان کو خوب توجہ دیا کریں, ان اعلانات کو خوب توجہ دیا کریں, ان اعلانات کو. بچوں کی خود حفاظت کریں, لائے ہیں تو ان کو خود سنبھالیں بچوں کو, اور خدمت والوں سے تعاون کریں. اور سعادت مند کچھ لوگ ہوں گے, مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جیسے آپ نے میرے ساتھ یہ سارا پنڈال لگایا, ایسے مجھے سمٹوائیں گے. صحیح, مجھے 2-3 ہزار بندے چاہیے جو چند دن یہاں قیام کریں, باقاعدہ چند دن قیام کریں, ان کو جانے کی جلدی نہ ہو, اور وہ میرے ساتھ یہ پنڈال سمٹوائیں گے. سمٹوائیں گے یا مجھے اکیلا چھوڑ کے جائیں گے؟ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا. تو میرے ساتھ انشاءاللہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں. اور خوش قسمت چلا گاہوں کے جو میں نے 12 نقش دیے ہیں, یعنی 3 نقش ہیں, ہر نقش میں 4-4 نقش ہیں, 3 رنگوں کے جو نقش ہیں, اس کو بہت زیادہ سعادت مندی سے کرتے رہا کریں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پروردگار عالم, تیری بندیاں بندے بڑے ذوق سے, بڑے شوق سے, بڑے جذبے سے تیرے نام کی برکتیں لے رہے ہیں. اللہ ان کو سچی خیریں عطا فرما, سعادتیں عطا فرما, برکتیں عطا فرما, ان کی نسلوں کو بامراد کر دے,
ان کی نسلوں کو شاد و آباد کر دے. جم کے بیٹھے ہیں بڑے خلوص سے, ان کے چہرے پہ طلب بھی ہے, ان کے چہرے پہ جذبے بھی ہیں اور ان کے اندر جستجو بھی ہے. اے اللہ ایسے جذبے سب کو عطا فرما, ایسے جذبے سب کو عطا فرما, ایسا خلوص سب کو عطا فرما, ان کی دنیا آخرت کو بامراد کر دے, کرم کر دے, فضل کر دے, اور پوری دنیا میں جتنی تیری بندیاں بندے ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب کو بھی اللہ رنگ و رنگ کر دے, آباد اور شاد کر دے, کسی کو بھی محروم نہ کر, سب کو محرومی سے بچا, سب کو عطا کر دے. آمین 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 برحمتک. جلدی سونے کی کوشش کریں, جلدی اٹھنے کی کوشش کریں, جلدی سونے کی کوشش کریں, اللہ خوش رکھے آپ کو. نماز 20 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی, 20 منٹ کے بعد.